Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
एक क्षण के लिए प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। हम उसके वचन में से पढ़ें निर्गमन चौथा अध्याय।
Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord has not appeared to thee.
तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप, और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वो फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहले चिन्ह को न माने, तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करें और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नील नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। प्रार्थना के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। अब आपके पास निवेदन हो इस सांझ में, जो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बताए, तो अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु मुझे अब स्मरण रख मेरी आवश्यकता में। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सांझ हम फिर तेरे पास आते हैं, ये अनुभव करते हुए जैसे कि हम अपने सिरों को भूमि की ओर झुकाए हैं जहाँ से हम आए, और यदि आप देरी करते हैं तो हम मिट्टी में वापस चले जाएंगे, परंतु उस प्रतिज्ञा की धन्य आशा के साथ जो मसीह में, जो परमेश्वर में है, मसीह उन्हें अपने साथ वापस ले आएगा। इस शानदार प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप प्रत्येक को स्मरण रखेंगे जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं। प्रभु मेरा भी है। आज रात्रि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि समाप्ति के इस पांचवें घंटे में कि आज रात्रि आप लोगों को ऐसा विश्वास देंगे कि आज रात्रि उनमें से प्रत्येक के लिए यीशु मसीह इतना वास्तविक होगा कि इस रात्रि के पश्चात हमारे मध्य में एक भी दुर्बल व्यक्ति ना होगा। होने पाए हर पापी अनुभव करे कि वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में है, और फिर वो अपने पापों से प्रायश्चित करे और अपना हृदय तुझे दे दे और आत्मा से भर जाए। दुष्टता की इस अंतिम घड़ी में, जैसा कि हम एक बड़ी छाया को इस पृथ्वी पर बढ़ता हुआ देखते हैं, परमेश्वर हम आज रात्रि दिव्य मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं। बोलने और सुनने के लिए अब पवित्र आत्मा ही सभा को ले, और हमारी आवश्यकता जैसी है प्रत्येक के लिए जीवन की रोटी तोड़ें, क्योंकि हम ये उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। आप बैठ सकते हैं। आज रात्रि मैं ये विश्वास कर रहा हूँ हम ये पूरा करने योग्य होंगे कि हम यत्न कर रहे हैं कि लोग देखें कि परमेश्वर में विश्वास करने की वास्तविकता को। अब कल दोपहर बाद 2:30 बजे वे सब जो प्रार्थना पत्रों के साथ हैं उनके लिए प्रार्थना होने जा रही है और निश्चित कर लें कि कोई ना छूटे बिना प्रार्थना पत्रों के। प्रत्येक रात्रि हम कुछ प्रार्थना पत्र बांटते हैं और वो कल फिर से इन्हें देगा। मैं समझता हूँ लगभग 1:30 या ऐसे ही कुछ, सभा आरंभ होने से कुछ पहले। वे सब जो चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना हो, आपका कोई भी प्रिय, वे आए और प्रार्थना पत्र ले ले। निश्चय ही प्रार्थना पत्र के लिए उनका स्वागत है। और हम, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, उन पर हाथ रखकर और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। और यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु की उपस्थिति में नहीं उठ सकता है और उसे अपना चंगाकर्ता स्वीकार करें और आप ये विश्वास करें, यदि हम प्रार्थना करें और आप पर हाथ रखें, ये सहायता करेगा। भाई, हम निश्चय यहाँ पर हैं कि आपके लिए करें जो आप चाहते हैं। कारण कि देर में बंद करता हूँ, बहुत समय से देख रहे हैं कि हर कोई जिसे मैं कर सकता हूँ, जो पहुँच सकता है और परमेश्वर को इस आधार पर ले सकता है, और हमारे पास बहुत सारे नहीं हैं। भवन इतना बड़ा नहीं है और इसलिए हमारे पास बहुत से लोग नहीं हैं, और हम कल दोपहर ले सकते हैं और वे सब जो यहाँ हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कल दोपहर बाद उनके लिए है, इसी उद्देश्य के लिए कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें। हम यहाँ कुछ भी करने को हैं कि हम सहायता कर सकें आपके लिए, जीवन को और अच्छा बना सकें और बोझ को हल्का करें इस जीवन में जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं। और फिर किसी भी समय जो ये अनुभव करें, वे जो प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं सभा का कौन सा भाग चल रहा है, आप सीधे आ जाएं। वेदी की बुलाहट की प्रतीक्षा ना करें, निमंत्रण देने की प्रतीक्षा ना करें, आप सीधे आएं और मसीह को स्वीकार करें। तुरंत आएं और तभी उसे स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारा मूल उद्देश्य है यहाँ होने का, कि देखें प्राण परमेश्वर के राज्य में जन्म ले। और अब कल रविवार है और संडे स्कूल होगा, कलीसियाएं, कारण है कि हमारी सभा दोपहर बाद होगी रविवार को, ताकि हम किसी सभा में कोई रुकावट उत्पन्न ना करें। हम विश्वास करते हैं कि हर मसीही की अपनी एक कलीसिया होनी चाहिए जिसमें वो जाए। हर मसीही कहीं विश्वासियों से मिले और हर कहीं आप मिले, यही कलीसिया है। अब यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं यहाँ की एक कलीसिया से संबंध रखता हूँ। वे जो पास्टर लोग यहाँ हैं, ये सहयोग का प्रतिनिधित्व है। क्यों? क्योंकि वे लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं कि सब लोगों को दिखाई पड़े, ताकि वे जो चल रहा है उसका समर्थन देते हैं। वे इस प्रकार की सेवकाई में विश्वास करते हैं, दिव्य चंगाई, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आदि आदि। वे यहाँ इसकी गवाही देते हैं, ये हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है, ताकि सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दी है उनकी भक्त मंडली की सहायता हो सके। अब ये वास्तविक पास्टर हैं, वे सारे आत्मिक लाभों को देख रहे हैं जो वो ले सकता है। हर चीज जो परमेश्वर कर रहा है वो पूरे यत्न से कर रहा है कि अपनी कलीसिया को परमेश्वर की ओर बढ़ने में सहायता करे। निश्चय ही ऐसे सेवक गणों की सराहना में मैं अपनी टोपी उतारता हूँ। और इन व्यक्तियों को ये कठिनाई में करना पड़ा कि आप इसका सत्य होने का विश्वास करें, ये इन्हें कठिनाइयों में करना था। और मैं निश्चय ही परमेश्वर के इन महान लोगों का आभारी हूँ जो अपना स्थान लेने को तैयार हैं, अपने मत परिवर्तन के आधार पर अपने कर्तव्य स्थान को, और विश्वास करते हैं परमेश्वर इन्हें आशीषित करे। और मैं निश्चित हूँ कि अच्छा करेंगे। अब यदि आप यहाँ अपरिचित हैं तो मालूम करें कि इन भाइयों की कलीसियाएं कहाँ हैं, वे कहाँ हैं। कल उनके पास जाएं, उनकी विशेष सभा होगी और वहाँ सेवक गण होंगे जो विभिन्न आराधनालयों में बोलेंगे। और जैसे कि ये घोषणा हुई है, इसलिए कल उनके साथ हूँ। और फिर कल दोपहर बाद यदि आप सभा के समापन पर आना चाहते हैं, तो हमें आपको पाकर प्रसन्नता होगी। सारी कलीसियाएं, सारे नामधारी, ये सबके लिए है, सबका स्वागत है। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, चर्च ऑफ क्राइस्ट, चर्च ऑफ गॉड, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, नास्तिक, आप जो भी हैं, हम आप आमंत्रित हैं। यदि नास्तिक आएगा सभा में और बैठेगा और अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसका भी वैसे ही स्वागत है जैसे सबका। ठीक है, कुछ है जिसके लिए हम उसे यहाँ चाहते हैं कि कुछ किया जाए, कि उसकी सहायता हो, कि वो अपनी गलती देखे और प्रभु के पास आए, क्योंकि हम निश्चित हैं। कितनों ने कभी वो छोटा दर्शन पढ़ा है जो क्रिश्चियन बिजनेसमैन की पत्रिका ने प्रकाशित किया है? और मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ और पत्रिकाओं ने, समय के पर्दे के पीछे देखना, अब ये सत्य है मित्र, और उसे छोड़ नहीं सकते। तब से मैं भिन्न व्यक्ति हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वास्तविक है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसे नहीं छोड़ेंगे, वो महान स्वर्ग जो परमेश्वर ने विश्वासी के लिए रखा है। यदि आप करते हैं, आपने पृथ्वी पर क्या पूरा किया है? क्योंकि आप नहीं जानते किस समय आपको ये संसार छोड़ना होगा, परंतु आप एक बात जानते हैं, आप निश्चित हैं कि आप इसे छोड़ने जा रहे हैं। इसलिए यदि ये सत्य है, तो इसके लिए यत्न करने वाले हम कोई मूर्ख नहीं होंगे कि उसे पाएं। हम कोई भी प्रकार के अवसर से नहीं चूकना चाहते। देखिए, स्मरण रखिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसमें की हर प्रतिज्ञा पर। जरा सोचें, हर बीमारी, हर दिल के दौरे, हर मृत्यु, हर परेशानी, हर दुख का क्या कारण है? ये छोटा मस्तिष्क, विकृत बालक, ये सारी चीजें, अपाहिज, अंधा, हर अस्पताल जो बनना है, क्योंकि एक व्यक्ति ने वचन के एक छोटे भाग का अविश्वास किया। वो हवा थी, शैतान ने उसे इसको उड़ा दिया, न कि उल्लेख, परंतु इससे उसे ढांप दिया, कहा निश्चय ही प्रभु बहुत ही भला है। आजकल आप इस जीवन के विषय में बहुत सुनते हैं कि परमेश्वर भला परमेश्वर होने के नाते वो भला परमेश्वर है, परंतु स्मरण रखें, वो पवित्रताई का परमेश्वर है, एक परमेश्वर जो पाप को अनदेखा नहीं कर सकता। उसका भुगतान कर दिया गया है और आपको इसे उसी के आधार पर स्वीकार करना है। और स्मरण रखें, वो क्रोध का परमेश्वर है, क्रोध का परमेश्वर, और आप क्रोधी परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, ना कि केवल भले और अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज रात्रि वो आपका बचाने वाला है, उस दिन वो आपका न्यायी है। इसलिए निश्चित रहें, कोई भी चीज बिना किए ना छोड़ें। मित्र, ये नहीं होगा, ये भुगतान नहीं करता, इस पर संयोग से ना जाएं। निश्चित, दुगने निश्चित, क्योंकि आपके पास दूसरा अवसर नहीं है, आपका केवल यही अवसर है जबकि आप यहाँ पृथ्वी पर हैं। धनी पुरुष और लाजर को स्मरण रखें, आपके और उसके मध्य में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, किसी मनुष्य ने उसे कभी भी पार नहीं किया या कभी करेगा, समझे? जब आप मरते हैं तो ये तय हो गया। मैं जानता हूँ लोग दावा करते हैं कि आपके लिए उन स्थानों से वापस निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु आप कभी भी इसका विश्वास ना करें, ये परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, समझे? जिस ओर पेड़ झुकता है वो उसी ओर गिरता है। और यीशु ने कहा स्वयं कि वो एक खाई है, कि जब एक मनुष्य मरता है और नरक को जाता है, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता, इसे कोई मनुष्य कभी पार नहीं कर सकता, ना ही करेगा, ये तय हो गया। जहाँ तक मेरा संबंध है, जब यीशु ने कहा तो यही था, बस यही सब। इसलिए स्मरण रखें, अब आपका अवसर है, और आज रात्रि आपका अंतिम सुअवसर हो सकता है। क्या आप कभी समझ सके कि क्या होने जा रहा है? यदि आप बस इसे देख सकें, मैं आशा करता हूं कि आप नहीं सोचते कि इस प्रकार बोल रहे हैं कि मैं आप पर प्रभाव डालने का यत्न कर रहा हूं, कि आप किसी मनुष्य की ओर देखें या किसी मनुष्य पर विश्वास करें। मैं ये नहीं कर रहा हूं मित्र, मैं आपको ये विश्वास करवाने का यत्न कर रहा हूं, वो कौन है जिसकी उपस्थिति में अब हम बैठे हैं? यीशु मसीह वही परमेश्वर जो उस दिन आपका न्याय करेगा, स्वयं को आपकी उपस्थिति में प्रमाणित कर रहा है, वही चीज जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो इन अंत के दिनों में करेगा। मैं सोचता हूँ भाई राइस प्रातः नाश्ते पर अच्छा चित्रण किया, उसके आने का चारों ओर से समेटा बजाय कि बखेरने के। क्या आपने आनंद लिया? निश्चय ही, ये बहुत ही अच्छी रीति से प्रस्तुत किया गया। अब स्मरण रखें, कभी कभी कोने में समेटना, परंतु हमें स्मरण रखना है, हमें इन कोनों को पलटना है। मैंने इस पर प्रचार किया है एक बार और, इसे जंक्शन कहा, हम मिलान पर वार करते हैं, अक्सर हमें ऐसे करना पड़ता है और चारों ओर विभिन्न प्रकारों से। अब आज रात्रि अगली कुछ मिनटों के लिए मैं एक विषय लेना चाहता हूँ, चिन्ह की आवाज। अब आज रात्रि हमारा दृश्य निर्गमन की पुस्तक में खुलता है, और निर्गमन का अर्थ बाहर आना, बाहर निकलना। अब ध्यान से सुनने का यत्न करें जितना हो सकता है। मैं किसी आप लोगों को प्रचार करना चाहूँगा, आप इतने अच्छे श्रोतागण, परंतु मेरे पास आवाज नहीं है, इस पर थोड़ा जोर देना, और मैं जानता हूँ कि ये क्या होगा। अब मुझे कुछ विश्राम लेना है 8 या 10 दिनों के लिए, इसके पहले कि मैं अगली सभाएं आरंभ करूं। देखिए, अब बस केवल यही एक सभा नहीं है, ये एक दिन के बाद दूसरी, एक सप्ताह बाद दूसरा सप्ताह, महीने महीने, वर्ष वर्ष के बाद। देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं, और मैं सारे समय सोचता रहता हूँ, वर्ष के बाद वर्ष, ये कभी एक बार भी नहीं हुआ। उसने कभी कोई बात कही हो सिवाय कि वो सिद्ध हो, बिल्कुल सत्य, सारी भाषाओं में, समस्त संसार में 7 बार, समझे? कोई व्यक्ति कहीं भी नहीं कह सकता सिवाय जो कि सिद्ध था, ठीक हर बार बिंदु पर। जब वो कहता है कि निश्चित बात घटित होगी, ठीक वैसे ही घटित होती है, सप्ताहों और महीनों पहले बताता है, और वर्षों और इसके पहले ये घटित हो, और ये सदा ठीक बिंदु पर हुआ, कभी नहीं, एक बार भी असफल नहीं हुआ, और ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर है। अब मैं एक मनुष्य के समान असफल हो सकता हूँ, उदाहरण के लिए मेरी ओर कभी नहीं देखिए, क्योंकि मैं केवल आपके समान हूँ, एक पापी अनुग्रह से बचा हुआ, परंतु वो परमेश्वर है, अलौकिक, देखिए, स्वयं को प्रमाणित करता है, उसे ये नहीं करना है, परंतु उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा। यीशु ने चंगा किया क्योंकि ये वचन पूरा हो, उसने वे चीजें की क्योंकि परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा, यही जो वो आज कर रहा है, ताकि वचन पूरा हो सके जिसका मैंने आपको उल्लेख दिया है, रात्रि के बाद रात्रि। अब ध्यान दें, जबकि उसकी उपस्थिति समीप है, निश्चय ही ये उत्तेजना लाती है, जैसे कि इस प्रातः मैंने बोला, कोई भी चीज बिना उत्तेजना मरी हुई है, और कोई भी धर्म जिससे थोड़ी उत्तेजना ना हो तो अच्छा है, उसे गाड़ दो, ये मरा हुआ है, ये उत्तेजना लाता है, वो हमें जीवित करता है। परंतु जब हम जिला दिए गए, हम ये स्मरण रखें, किसने हमें जीवित किया, इसने क्या किया, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, यीशु मसीह हमारे मध्य में स्वयं को दर्शा रहा है कि वो जीवित है, ना कि एक शारीरिक देह। जब उस समय शारीरिक देह स्वर्ग से वापस आती है, समय और ना होगा, इसका सब कुछ यही है, और हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जब ये चीजें घटित होने वाली हैं। अब परमेश्वर के पास इसके पहले निर्गमन था, वहाँ है, हर चीज परमेश्वर के साथ तीन में चलती है, परमेश्वर तीन में सिद्ध हुआ है, मसीह का पहला आगमन, अपनी दुल्हन को छुड़ाना, मसीह का दूसरा आगमन, अपनी दुल्हन को लेना, मसीह का तीसरा आगमन, अपनी दुल्हन के साथ सहस्र शताब्दी में राज्य करने, हर चीज तीन में चलती है। अब हुए हैं, होंगे तीन निर्गमन, उनमें से एक परमेश्वर उन्हें नाव में लेकर आया, एक निर्गमन के लिए पृथ्वी के ऊपर सवारी, अगली बार परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर लाया, और अगली बार परमेश्वर इन्हें ऊपर ले लेता है, अंदर बाहर ऊपर, अगला निर्गमन ऊपर जाना है। अब हम एक का सामना कर रहे हैं, ऊपर जाने का समय, वैसे ही जैसा जीवन करता है वही चीज, हम जीवन में अंदर आते हैं, हम जीवन से बाहर जाते हैं, हम जीवन के लिए ऊपर उठते हैं, बिल्कुल ठीक वही चीज। इसलिए हमारा दृश्य आज रात्रि निर्गमन पर खुलता है, और परमेश्वर अपने राष्ट्र को लेने को तैयार है। इज़राइल एक राष्ट्र है, परमेश्वर इज़राइल से व्यक्तिगत व्यवहार नहीं करता, इज़राइल राष्ट्र है, सदा उसके साथ व्यवहार करता है, और अंत के दिनों में कलीसिया के चले जाने के बाद, तब परमेश्वर इज़राइल को एक राष्ट्र के समान बचाएगा, ये अब अपने वतन में है, उसके लिए तैयार। और बाइबल ने कहा वे बच जाएंगे, एक राष्ट्र एक दिन में जन्म लेगा। परमेश्वर यहूदियों से व्यक्तिगत व्यवहार नहीं करता, वो उनके साथ राष्ट्र के समान व्यवहार करता है, इज़राइल से सदा, क्योंकि ये उसका राष्ट्र है। और यहाँ वो अपने राष्ट्र को राष्ट्र में से निकालने को तैयार है, एक निर्गमन में अपने लोगों को न्याय में से, और वही जल जिसने संसार को डुबाया, नूह को बचाया, समझे? और वही पवित्र आत्मा जिसे आज लोग अस्वीकार कर रहे हैं, कलीसिया को लेकर और ऊपर ले जाएगा, और इसका विश्वास न करने वालों पर न्याय लाएगा। यीशु ने कहा, जब उन्होंने उसे बालजबूब कहा, दूसरे शब्दों में वो एक भावी बताने वाला था, वे उसने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मनुष्य का पुत्र बलिदान चढ़ाया नया गया था, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा कि इन्हीं बातों को करे, उसके विरुद्ध एक शब्द भी ये कभी क्षमा ना किया जाएगा, ना इस संसार में, ना ही आने वाले संसार में, इसे अस्वीकार होना ही है, और फिर इसके पश्चात न्याय होना। देखो, परेशानी ये है कि हम मेरे मस्तिष्क में कहानी जो एक बार मैंने पढ़ी थी है, एक बूढ़ा सिपाही समुद्र से आया और एक युवा अंग्रेजी का कवि समुद्र को जा रहा था, और इसलिए कवि ने बहुत कुछ समुद्र के विषय में लिखा था, परंतु उसने देखा कभी नहीं था, इसलिए वो अपने मार्ग पर था। और पुराने नमक ने उससे कहा, अपने ठूंठ से पाइप को अपने मुंह में लिए हुए कहा, तू कहाँ जा रहा है मेरे भले मनुष्य? उसने कहा, मैं समुद्र को जा रहा हूँ। उसने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा, मैंने इसके विषय में लिखा है और दूसरों ने क्या कहा, परंतु कहा, ये जानकर मैं रोमांचित हूँ कि मैं समुद्र के समीप हूँ। उसने कहा, ओ नमकीन खारी गंध, इसकी बड़ी सफेद टोपियाँ इसके ऊपर खिल रही हैं और नीला आकाश स्वयं को इसमें परिवर्तित कर रहा है और उड़ते हुए समुद्री पक्षियों को सुनना जैसे कि वे उड़ रहे हैं। ओ मैं रोमांचित हूँ इसके देखने के विचार को लेकर। पुराने नमक ने कहा, मैं इसी पर जन्मा हूँ, 60 वर्ष पहले मैं इसमें कुछ भी इतना सुंदर नहीं देखता। देखिए, उसने इसे इतना देखा जब तक कि वो उसके लिए साधारण नहीं हो गया। अब आज पेंटिकॉस्टल कलीसिया के साथ यही बात है, इसने परमेश्वर को इतना कुछ देखा है जब तक परमेश्वर उनके लिए साधारण हो गया। इसे कभी ना होने दें। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ, लुईविल केंटकी में, जेफरसनविले इंडियाना जहाँ से मैं आया हूँ, ये वहाँ से नदी पार है। एक महिला 10 सेंट स्टोर में जा रही थी, उसकी गोद में छोटा लड़का था और वो काउंटर पर जा रही थी और उन्मत्त हो रही थी। वो कुछ उठाएगी, उस छोटे लड़के को दिखाएगी, वो बस बैठा ताकता रहेगा। वो फिर दूसरे काउंटर पे जाएगी और कुछ उठाकर छोटे लड़के को दिखाएगी, वो बस ताकेगा। और थोड़ी देर बाद वो छोटी घंटी उठाकर और उसे बजाने लगी और छोटा लड़का बस ताक रहा था और वो चिल्लाने लगी, अपने हाथ ऊपर उठाए और 10 सेंट स्टोर के लोग उसे देख रहे थे। वे लोग उसके पास पहुंचे कि मालूम करें क्या गड़बड़ है। उसने कहा, मेरा ये छोटा लड़का, कहा ये केवल 3 वर्ष का है, और कहा मैं अचानक 1 वर्ष पहले ये बस बैठकर और शून्य में ताकता है, और कहा मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई और कहा डॉक्टर ने कुछ दवाएं और इलाज लिखा और आदि आदि, और कहा और आज डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसने सोचा वो थोड़ा अच्छा है, परंतु कहा वो ठीक नहीं है। कहा मैंने उसके सामने सब कुछ हिलाया कि उसकी आयु के छोटे लड़के को आकर्षित करे, उसका ध्यान हर चीज जो उस आयु के बालक को आकर्षित करे, मैंने उसके सामने हिलाया, बस बैठा हुआ शून्य में ताकता है। कहा वो पहले से अच्छा नहीं है। ये कुछ पेंटिकॉस्टल कलीसिया के समान है। बाइबल में परमेश्वर ने उनके सामने हर प्रकार का वरदान हिलाया और वे अब भी बैठे और अंतरिक्ष में ताक रहे हैं जैसे कि ये कुछ गलत था। ये समय है मित्रों, हम जाग जाएं इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। स्मरण रखें, परमेश्वर उन वरदानों को नहीं हिलाता जब तक कि वो आपके ध्यान को आकर्षित करने का यत्न नहीं करता। परमेश्वर राष्ट्र में से एक राष्ट्र निकाल रहा था जैसे कि वो अब कर रहा है, दुल्हन को कलीसिया से बाहर निकालने जा रहा है, स्त्री के वंश के बचे हुओं को छोड़ने जा रहा है, चुने हुए कलीसिया से बाहर आएंगे, स्वाभाविक कलीसिया पीड़ाओं में यहाँ रहेगी, वे चुने हुए कभी कभी छांटे हुए कहलाते हैं, चुने हुए बचे हुए। हम ध्यान दें, तब उसने कैसा किया, क्योंकि वो अपना कार्य करने का ढंग कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का चीजें करने का की एक ही विधि है और उसी प्रकार से वो करता है और ये ठीक विधि है सदा। देखिए उसने ये कैसे किया और ढंग जो उसने इसमें किया, और फिर हम इसकी झलक पाते हैं। अब मैं प्रतीकात्मक व्याख्या करने वाला हूँ, निश्चय ही मेरे पास शिक्षा नहीं है, मुझे पीछे जाकर देखना होता है कि उसने ये कैसे किया, और हमें ये सिखाया है पुराना नियम आने वाली बातों की छाया है। इसलिए यदि मैं यहाँ देखूँ और अपना हाथ कभी ना देखा हो और मैं अपने हाथ की छाया देखूँ और मेरे पास 5 उंगलियाँ हैं, तब जब मेरा हाथ वहाँ आएगा तो मेरे पास अच्छा आभास है। इसलिए उनके साथ जो हुआ वो उदाहरण था कि कैसे परमेश्वर चीजों को करता है, विधि जैसे वो अब करता है, और जिस प्रकार वो करता है वो उससे कभी नहीं बदला। प्रत्येक बार बाइबल में होते हुए वो चीजों की करने की विधि कभी नहीं बदलता, निरंतर वैसे ही, क्योंकि इसे करने की पहली विधि सिद्ध है, क्योंकि उसके पास दूसरा मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिद्ध है और वो उसकी सारे मार्ग सिद्ध है। ध्यान दें, उसने ये कैसे किया, मूसा को बुलाया गया और पहले से ठहराया गया कि इस कार्य को ले, जो वो था उसने लिया। परमेश्वर, अब मैं सोचता हूँ यदि आप इसे क्षमा करें, मैंने ये अंधाधुंध नहीं कहा, मैं केवल इस मंच पर वो कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता और परमेश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानना चाहता। अब मैं सोचता हूँ यहाँ जहाँ हमारी अंतिम वर्षा, भाई लोग इसमें गड़बड़ा गए, वे एक दूसरे पर हाथ रखते हैं और उन्हें भविष्यद्वक्ता बनाते हैं और आदि आदि। और अब ये वचनानुसार नहीं है, वरदान और बुलाहट बिना प्रायश्चित के है। आप जो भी जन्मे हैं, आप वही हैं जो आप आरंभ में थे। बीते दिनों में उन फरीसियों को देखें, उनके पास थोड़ा सा उजियारा था क्योंकि वे कर सकते थे, व्यवस्था उनके पास थी और वे व्यवस्था से ही जीते थे, परंतु उनके हृदय के अंदर कालिक थी जितनी हो सकती थी। और वहाँ एक छोटी सी स्त्री थी, एक व्यभिचारिणी, उसका पहले का जीवन यहाँ उतना ही काला जितना हो सकता था। वो बदनाम थी, परंतु हृदय की गहराई में वो जीवन के लिए ठहराई हुई थी। और जब यीशु वचन दृश्य पर आया तो उन फरीसियों ने कहा, ये मनुष्य बालजबूब है। इससे क्या हुआ? जो थोड़ा सा उजियाला उनके पास था वो अंधियारा हो गया। यीशु ने कहा, तुम अपने पिता से हो शैतान और तुम उसके कार्य करते हो। परंतु जब ये साधारण बदनाम स्त्री आई और उसने परमेश्वर के वचन को देखा, वो जान गई। उसने इसे नहीं जिया, परंतु वो ये जान गई, और जैसे ही वो उससे बोला, उसने कहा, मुझे लगता है तू भविष्य रखता है। और वो उसने कहा, मैं जानती हूँ मसीह ये करेगा। और उसने कहा, मैं वही हूँ। इसने क्या किया? इसने अंधकार को मिटा दिया और सब सफेद कर दिया। क्यों? वहाँ एक बीज पड़ा था, एक पहले से ठहराया हुआ बीज जो वहाँ था। ये परमेश्वर का विचार संसार के रचने से पहले, वहाँ अनंत जीवन का केवल एक रूप है। यदि आपके पास अनंत जीवन है तो फिर आप स्वयं इसके पहले के संसार की सृष्टि होती, आप परमेश्वर के विचारों में थे। आप उसके विचार के फल हैं, क्योंकि अनंत कभी आरंभ नहीं हुआ या कभी समाप्त नहीं हो सकता। आप सदा से परमेश्वर के अर्थशास्त्र के भाग हैं। ये परिवर्तित हो रहा है, अब ये हो रहा है। उनके पास एक चित्र है जो तैयार करना है, वो मृत्यु है। जब नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है तब आप दुल्हन में हैं, और मसीह के साथ जैसा उसने सोचा, पति पत्नी के समान। आज इसलिए परमेश्वर मसीह और कलीसिया एक होंगे, अब चुने हुए बुलाए गए। मूसा एक सही बालक, बाइबल ने ये कहा। भविष्यद्वक्ताओं में से एक यर्मयाह, परमेश्वर ने कहा, इसके पहले कि तेरा रूप तेरी माँ के गर्भ में बनता, मैंने राष्ट्र का भविष्यद्वक्ता होने के लिए तुझे अभिषिक्त किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो क्यों पवित्र वचन में प्रभावित हुआ? यशायाह ने 712 वर्षों उसके आने से पहले कहा, वो जंगल में पुकारने वाला एक शब्द है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। और लगभग 400 वर्षों पहले हम उसके प्रकटीकरण को फिर पाते हैं। मलाकी ने कहा, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करे। देखिए, वो ठहराया गया था। और इसी प्रकार से परमेश्वर के सारे कार्यस्थल, यदि वे परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, यदि वे इसमें सिखाए गए हैं, तो ये केवल तोप का चारा है। देखिए, ये कुछ और नहीं हो सकता। यदि ये खाने का टिकट है, तब आपने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खाने के टिकट के लिए बेच दिया। आप संस्था के साथ जाने के लिए समझौता करेंगे या किसी झुंड से, परंतु ये परमेश्वर का है तो आप वचन के द्वारा खड़े होंगे, चाहे जो हो, क्योंकि आप इसके द्वारा खड़े रहने के लिए जन्मे थे। मूसा, उसका स्थान कोई नहीं ले सकता था, कोई और इस कार्य को नहीं कर सकता था, वो इसके लिए अभिषिक्त था। और भाई बहनों, यदि आपके पास अनंत जीवन है तो आप किसी निश्चित बात को करने के लिए ठहराए गए थे। हो सकता है अच्छी घरेलू पत्नी, हो सकता है कुछ और, परंतु आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। परमेश्वर ने आपके लिए स्थान बनाया है। किसी और का स्थान लेने का यत्न न करें, ये शारीरिक नकल है। देखिए, दिखाता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। वही रहें जो आप हैं, बिल्कुल सही, कुछ और ना बने। अब हम पाते हैं परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह दिए कि अपने दावे और बुलाहट को सिद्ध करे, और हर सच्चा चिन्ह जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया, उसके पीछे एक आवाज होती है। अब असफल ना हो, इस पर मेरा ये अंतिम पाठ है। हर सच्चा चिन्ह, हमारे पास चिन्ह है जो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान लगभग नकल कर सकता है किसी भी चीज की जो है, परंतु सच्चा चिन्ह जो परमेश्वर ने भेजा, उसके पीछे परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यदि वे पहले चिन्ह की आवाज को नहीं सुनेंगे तो फिर उनके सामने दूसरे चिन्ह को करना, और अब यदि वे इसकी ना सुनेंगे तो जल लेकर भूमि पर डालना। और ये चिन्ह था कि वे अपने ही लहू का घूंट पिएंगे। ध्यान दें, बिल्कुल वैसा जैसा उसने कहा, धूल धूल तुम्हारे पैरों की, सदोम अमोरा के लिए उस दिन अधिक सहनीय होगी बजाय उन नगरों के जिसने तुम्हें अस्वीकार किया। अब हम खेलने वाली कलीसिया नहीं, ये कलीसिया है, मसीह की कलीसिया है। हम मसीह में हैं, मसीह की कल्पित देह, हम इसमें जन्मे हैं। आप इसमें जुड़ नहीं सकते। मैं ब्रैनम परिवार के साथ लगभग 55 वर्षों से हूँ और उन्होंने परिवार में सम्मिलित होने के लिए कभी नहीं कहा। मैं जन्म से ब्रैनम हूँ और इसी प्रकार से आप एक मसीही हैं। आप मसीही जन्मे हैं, ना कि सम्मिलित हुए हैं। आप इसमें जन्मे हैं। हर कोई जन्म से डरता है। उनके पास एक अच्छी स्वच्छ विधि है कि छोटा सा हाथ लें या छोटे पत्र पर हस्ताक्षर करें या पानी में थोड़ा सा नमक लें। ये तो जन्म नहीं है। एक जन्म भयानक चीज है, एक जन्म अजीब चीज है। मैं चिंता नहीं करता यदि ये सूअर के बाड़े में हो या भूसे के ढेर में या गुलाबी सजे अस्पताल के कमरे में। एक जन्म बखेड़ा है और ये आप में से बखेड़ा बनाता है। आप छोड़ना नहीं चाहते, आप इसे नहीं चाहते, ये या वो या कुछ, परंतु आंसू आपके मुंह का रंग धो देते हैं और आपको भिन्न व्यक्ति बना देते हैं। यदि आपने दोबारा जन्म लिया है तो आप में से ये गड़बड़ बनाएगा, परंतु आप एक नई सृष्टि के हो जाएंगे, समझे। वे इसे नहीं चाहते, वे सरल मार्ग चाहते हैं, आप जानते हैं, और सरल मार्ग नहीं है। जैसे कि गाना है, उसने कहा मैं प्रभु के थोड़े तुच्छों के साथ मार्ग लूंगा। वो बनावटी भूमि का पौधा नहीं होना चाहता। हर सच्चा चिन्ह परमेश्वर का पीछे से परमेश्वर के शब्द को लाता है। यदि एक मनुष्य राष्ट्र में एक चिन्ह देता है या किसी समय, और वो आवाज जो वो बोलता है उसके पीछे परमेश्वर का शब्द नहीं, तो ध्यान रखें, इसका विश्वास न करें। यदि कुछ पुराने विद्यालय, यदि एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर की ओर से चिन्ह दिखाता है, और फिर उस व्यक्ति की शिक्षा वही पुराना धर्म विज्ञान जो उसके पास इन वर्षों में था, तो वो चिन्ह परमेश्वर ने कभी नहीं भेजा। पीछे पवित्र शास्त्र में देखो और देखो यदि वो था, पवित्र शास्त्र में ढूंढो। वो व्यक्ति वापस आता है और कहा अब हम सब इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। ये तो पुराना स्थापित मामला रहा है, क्या आप इसका विश्वास नहीं करते। हम इसमें जा रहे हैं थोड़ी मिनटों में। नहीं, आप इसका विश्वास ना करें। परमेश्वर सदा अपना चिन्ह प्रमाणित करता है। परमेश्वर की ओर से चिन्ह परमेश्वर का शब्द बोलता है। और यदि ये वही पुराना विद्यालय जो आपका था, तो वो फिर क्यों चिन्ह देगा। आप तो पहले ही उसमें हैं। वो आपको उस स्थान पर घेरने का यत्न कर रहा है। चिन्ह रोको, धीमे हो जाओ, देखो आप कहाँ जा रहे हो। आप अपने आप को कहीं कोने में डाल देंगे यदि आप ध्यान नहीं देते। वहाँ तेज घुमाओ, और ये सदा एक चिन्ह है वहाँ, जब इसके पहले घुमाओ को बनाते हैं आपको टूटने से बचाने को। एक अच्छा सड़क निर्माण करने वाला चिन्ह देता है, और हम महिमा की राह में यात्रा कर रहे हैं। और यदि चिन्ह उस पुरानी बात को बोलता है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर चिन्ह अपने लोगों के ध्यान आकर्षण के लिए देता है। चिन्ह परमेश्वर के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। परमेश्वर का चिन्ह दिया गया कि परमेश्वर के लोगों का ध्यान आकर्षित करे। अब यहाँ जलती झाड़ी भविष्यद्वक्ता को आकर्षित करने के लिए है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से भागा था और परमेश्वर ने जलती झाड़ी चिन्ह के लिए दी। और उसने ये विचित्र चिन्ह देखा, उसने कहा मैं उस विचित्र चिन्ह को देखने जाऊंगा कि वो झाड़ी जलती है परंतु राख नहीं हुई। अब परमेश्वर अपने भागे हुए नबी का ध्यान खींच रहा है। वो दूसरे को ले सकता था, परंतु उसने मूसा को ही कहे के लिए चुना, और उसका स्थान और कोई नहीं लेगा। यात्रा में किसी ने करने का यत्न किया, आप जानते हैं, दातान खड़ा हुआ और इसमें से संस्था बनानी चाहिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा स्वयं को अलग कर, मैं बस उन्हें सटक जाऊंगा, समझे। परमेश्वर व्यक्तिगत व्यवहार करता है, समझे। अब इस पर ध्यान दें कि वो नबी का ध्यान आकर्षित करने का यत्न कर रहा था, ताकि नबी को अपने सही स्थान पर ले आए। देखिए, और उसने जलती झाड़ी का चिन्ह दिया। और ध्यान दें, जो शब्द उसके बाद आया वो पवित्र शास्त्र का शब्द था। मैंने अपने लोगों का रोना सुना है और उनका करहाना, उनके काम लेने वालों के कारण, और मुझे अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है। आमीन, बस ये तय हो गया, मुझे प्रतिज्ञा स्मरण है। ये पवित्र वचन की आवाज है और मैं तुझे भेज रहा हूँ उन्हें छुड़ाने के लिए। मैं नीचे उतर आया हूँ और मैं तुझे भेज रहा हूँ। इसमें रखें, परमेश्वर मनुष्य से हटकर कुछ नहीं करता। आप ये जानते हैं, यही है जो लोगों को ठोकर खिलाता है। देखिए, यही था जिससे लोगों ने यीशु के विषय में ठोकर खाई। उन्होंने कहा, तू मनुष्य है और स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वो परमेश्वर था, परंतु वे इसे समझ न सके। अच्छा, तुम मनुष्य होने के नाते। उसने कहा, ठीक है, तुम भविष्यवक्ताओं को ईश्वर कहते हो और तुम्हारी व्यवस्था इसे मान्यता देती है, और यदि तुम उन्हें ईश्वर कहते हो जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो जब मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। देखिए, ध्यान आकर्षित करने को। अब स्मरण रखें, यदि वही पुरानी पंक्ति पर ध्यान खींचा गया तो ये परमेश्वर नहीं है, परंतु अब परमेश्वर नबी को आकर्षित करने का यत्न कर रहा है। और उसने चिन्ह दिया, और शब्द जो चिन्ह के बाद आया पवित्र वचन का शब्द था। मैंने लोगों को देख लिया है, मैंने उनका रोना सुन लिया, मुझे अपनी प्रतिज्ञा स्मरण है। अब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार बोलने वाला है। उसे अपना नबी भेजना ही है, क्योंकि वचन नबी के पास आता है। बाइबल ने कहा, परमेश्वर ने स्वयं कहा, वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक पहले अपने दास भविष्यद्वक्ता पर प्रकट न कर दे। समझे? और फिर चिन्ह दिया गया और वचन प्रमाणित हुआ। ये चिन्ह की आवाज है। देखिए, मूसा के चिन्ह का शब्द, पहले चिन्ह जलती हुई झाड़ी, वचन पवित्र वचन का। मूसा ने उसे अपना चिन्ह करके लिया और मिस्र को चला गया, और जो परमेश्वर ने बताया उस चिन्ह को किया, और चिन्ह की आवाज थी, लोगों ने विश्वास किया और वे बाहर आए, और जब तक वे चलते रहे उन्होंने अच्छा किया, परंतु जब वे आवाज के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे तब वे रुक गए। स्मरण रखें, इसराइल ने यात्रा की। आप जानते हैं, वे जितना आगे बढ़े वे केवल 40 मील थे, और इसे करने में लगभग 40 वर्ष लगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने उस आवाज के विरुद्ध बुड़बुड़ाना आरंभ कर दिया जिसने चिन्ह दिया था। वे कितना कम जानते थे, जब वे किनारे पर चिल्ला रहे थे और आत्मा में नाच रहे थे, और मूसा आत्मा में नाच रहा था। वे केवल थोड़े दिनों की दूरी पर थे, परंतु उन्होंने बुड़बुड़ाना आरंभ कर दिया और कुछ भिन्न करना चाहा, और वे जंगल में 40 वर्ष पड़े रहे और वहाँ नष्ट हो गए। ये ठीक बात है, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, वे तेरे विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं मूसा, वो मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं। ये परमेश्वर की आवाज थी, ना कि मूसा की। ध्यान दे, यहोवा अपनी प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा बोलने जा रहा है, इसलिए अपना नबी भेजना ही है, ताकि यदि आप देखना चाहें तो ये उत्पत्ति 15:16 में है। हम पाते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि तेरा वंश अपरिचित देश में परदेशी बनकर रहेगा, और मैं उन्हें सामर्थ्य भुजा से निकाल ले आऊंगा। अमोरियों का पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं जो उसने दी, यहाँ वो नबी को आकर्षित कर रहा है उस जलती हुई झाड़ी के द्वारा। अब यदि जलती हुई झाड़ी ने कहा होता, मूसा परमेश्वर परमेश्वर है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, ओ मूसा तुम अच्छा कर रहे हो, इसे करते रहो, तुमने अच्छी स्त्री से विवाह किया है, वो सुंदर बालक है, निश्चय ही अच्छा पुत्र है, परमेश्वर की महिमा हो, तो ये वही पुराना विद्यालय है, समझे? परंतु वो कुछ करने के लिए तैयार था, इसलिए उसे व्यक्ति को आकर्षित करना था, और उसने इस पुरुष को करने के लिए दो चिन्ह दिए। हर चिन्ह का एक शब्द था जो ये सिद्ध करता है कि ऐसा ही है। अब ध्यान दें, उन आवाजों ने क्या कहा, यहाँ तक कि सृष्टि अब यहोवा बोलने के लिए तैयार है। फिर से नबी का आना एक चिन्ह है। क्या आप ये जानते हैं, युग के लिए भविष्यद्वक्ता का आना एक चिन्ह है। अब मेरा अर्थ डिविनिटी के डॉक्टर से नहीं है, मेरा अर्थ ईमानदार पादरी से नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति, वे अच्छे हैं, वे परमेश्वर के दास हैं, परंतु भविष्यद्वक्ता एक चिन्ह है। यहाँ बाइबल ऐसा कहती है, और इसका क्या चिन्ह है, ये चिन्ह है कि इसका वचन पूरा होना तय है, इस नबी के चिन्ह की आवाज के द्वारा पूरा होना है। ध्यान दें, भविष्यद्वक्ता का आना न्याय का निकट होना चेतावनी का चिन्ह है। क्या आप जानते हैं, यदि नबी राष्ट्र में है तो न्याय होने को तैयार है। स्मरण रखें, निश्चित ही उसे पहले परमेश्वर के द्वारा प्रमाणित होना है, और उस दिन का वचन और वो फिर चिन्ह दिखाता है। और फिर उस चिन्ह पर ध्यान दें जिसकी वो भविष्यवाणी करता है। उसने कहा यदि वो घटित हो तो उसकी सुनना, गिनती 12:6, यदि ये घटित ना हो तो इसे भूल जाएं। इसे तो पवित्र वचन का चिन्ह होना है जो वो देता है। और उसने चिन्ह के लिए क्या दिया? एक बार यदि वो कल आज और सर्वदा एक सा है तो वो निरंतर वही देगा। प्रभु का वचन नबी के पास आता है, वे वचन थे, और जब यीशु आया वो वचन था, और वचन हृदय की भावनाओं और विचारों को परखता है निरंतर और आगे और आगे। अब ध्यान दें, इस भविष्यद्वक्ता का आना सदा न्याय के समीप होने का चिन्ह देता है। आइए थोड़ी सी मिनटों के लिए रुकें, मैं अधिक लंबा नहीं लूंगा। आइए दो एक देख लें, 10 मिनटों के लिए और बाकी संदेश, बल्कि 10 मिनट। नू राष्ट्र पर एक नबी, राष्ट्र पर आने वाले न्याय का एक चिन्ह। मूसा एक नबी, राष्ट्र में आने वाले न्याय का चिन्ह। एलिया राष्ट्र में आने वाले न्याय का चिन्ह। यहुन्ना राष्ट्र में एक नबी, इसराइल पर आने वाले न्याय का चिन्ह। वे पूरी रीति से अलग किए गए। फिर ध्यान दें, चिन्ह क्या करता है? चिन्ह ध्यान को आकर्षित करता है और चुने हुए को तैयार करता है। इसके पहले न्याय हो उसे मार्ग से बाहर निकालता है। यही नू ने किया, चुने हुओं को तैयार किया, और उन बाकियों का ये क्या करता है? चिन्ह और चिन्ह की आवाज अविश्वासी को दोषी ठहराती है और उसे न्याय के लिए तैयार करती है और चुने हुओं को बच निकलने को तैयार करती है। यही चिन्ह है और इसके लिए चिन्ह दिए गए हैं आने वाले न्याय के लिए। चुने हुओं को वो इसे देखते हैं एक छोटी स्त्री के समान शुद्ध हृदय के साथ और दूषित देह, और फरीसी शुद्ध देह और दूषित हृदय। इसने एक को दोषी ठहराया और दूसरे को बचाया, और वे न्याय जिन्होंने मूसा को बचाया संसार को दोषी ठहराया उसका प्रचार। इसने चुने हुओं को तैयार कर दिया। चुने हुए किसने तैयार हुए? जब वे परमेश्वर के भेजे हुए चिन्ह को देखते हैं, वे पलटकर पवित्र शास्त्र में देखते हैं और देखते हैं यदि इसे वहाँ होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ है, ये क्या है? न्याय होने को बाकी है। तब चुने हुए शब्द को सुनते हैं, परंतु जो चुने हुए नहीं है ध्यान नहीं देते और कहा निरर्थक, आगे बढ़ो, हम कोई पुराना विद्यालय लेंगे। समझे? लूथर के दिनों में इन्होंने ऐसा ही किया, वेसली के दिनों में इन्होंने ऐसा ही किया, आज भी ये ऐसा ही करते हैं जिस प्रकार से इन्होंने सदा किया। परंतु ये चिन्ह है और उसकी आवाज जो इसके पीछे आती है, और आवाज पवित्र शास्त्र से प्रमाणित है। अब इसे ना भूलें, अब आगे बढ़ते रहें, क्योंकि संभव है मैं आपको फिर ना देखूं। मेरी इच्छा है यदि मेरे पास कोई विधि होती कि मैं यहाँ पर आ सकता था, अपने सारे भाइयों को लेता जब उनकी कोई बेदारी चलती हुई नहीं होती, तंबू लगाकर बैठता एक दिन के बाद दूसरे दिन, जब तक वास्तव में अंदर ना बैठ जाता। परंतु वो इसकी अनुमति ना देगा। मैं नहीं सोचता, हम अंत के बहुत ही समीप हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हम ठीक अंत पर हैं। मेरी पुस्तक में जो मैं लिख रहा हूँ, 1933 में एक प्रातः संडे स्कूल जाने को तैयार हो रहा था, बैप्टिस्ट संडे स्कूल जहाँ मैं सेवक था। पवित्र आत्मा ने आकर मुझे अंत समय दिखाया और 7 बातें दिखाई जो घटित होंगी। मैंने उन्हें लिख लिया, वे पुराने पीले कागज पर हैं। मुझे बिल्कुल ठीक बताया कि जर्मन कैसे फ्रेड लाइन बनाएगा और अमरीकनों को कैसे हार का सामना करना होगा। 11 वर्षों पहले जब लाइन कभी बनी, कहा कैसे मसलोनी उठेगा और कैसे वो इथोपिया को जाएगा और कैसे इथोपिया उसके पैरों पर गिर पड़ेगा और वो लज्जा के साथ मरेगा उल्टा और उसके लोग उस पर थूकेंगे। और मैंने कहा 3 वाद हैं, साम्यवाद, फासिज्म और नाजीज्म, वे सब रूस से बाहर साम्यवाद में मिल जाएंगे और कैथोलिक वाद को नष्ट कर देगा। देखिए यदि ये नहीं होता, मैंने कहा जैसी उन्नति होगी, मैंने कहा मैं देखता हूँ गाड़ी अंडे के रूप में दिखाई पड़ रही है, सड़क पर जा रही है, कार राजमार्ग पर जा रही है, एक प्रकार के नियंत्रण से उन्हें इसे नियंत्रित करना नहीं करना। मैंने देखा एक अमेरिकन परिवार कार के पिछले भाग में खेल खेल रहा है, उनके अब भी वो कार है, यदि उनके पास उसे रखने के लिए राजमार्ग हो, छोटी वॉक्स वैगन, बिल्कुल अंडाकार है, बिल्कुल ठीक, और ये सारी दूसरी कारें। क्या आप कल्पना कर सकते थे 1933 में कारें कैसी दिखती अब से? और फिर इसकी भविष्यवाणी हुई, स्त्रियों को मत की अनुमति, और वे क्या करते हैं और कैसे ये राष्ट्र इसराइल के समान है, देश में आकर रहने वालों को भगा दिया और देश को प्राप्त किया। और उनके पास पहले कुछ राजा थे, दाऊद और सुलेमान, परमेश्वर का भय मानने वाले राजा। और कुछ समय पश्चात दृश्य में आहाब मिले, उन्होंने उन्हें लाने के लिए उसे मत दिया, कुर्सी ले लेगा। कलीसिया संसारिक हो गई। और हमारे पास लिंकन वॉशिंगटन थे। देखिए ये आज क्या है, देखिए अब हम कहाँ जा रहे हैं, अगली चीज कहाँ है, हम अंत समय में हैं। और ये स्वाभाविकता में एक चिन्ह है, बिल्कुल ठीक। ये चुनावों को तैयार करता है और अविश्वासी को न्याय के लिए दोषी ठहराता है। यदि ये भविष्यद्वक्ता सच्चा भविष्यद्वक्ता है और जो वो कहता है वो घटित होता है, बाइबल ने गिनती 12:6 में कहा, उसकी चेतावनी को सुने, क्योंकि ये प्रमाणित हुआ, ये मनुष्य का नहीं, एक नबी एक मनुष्य है। परंतु अलौकिक चिन्ह से आवाज एक वचन का शब्द है, ये प्रमाणित है, फिर ये एक चेतावनी है। इसमें रखें, बाइबल भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है, दूसरे पत्रस में 1:21 भी और इब्रानी 1:1 में भी। अग्नि स्तंभ मूसा के लिए चिन्ह था, शब्द बोला जाने वाला था। अग्नि स्तंभ ने दर्शाया कि शब्द होने को तैयार है। अग्नि स्तंभ चिन्ह था। आपको याद होना चाहिए, अधिक समय नहीं हुआ हॉस्टन से, मूसा नबी इसराइल के लिए चिन्ह था, प्रतिज्ञा पूरी होने पर है। जब मूसा नीचे आया और भविष्यद्वक्ता के चिन्ह किए, वे तभी जान गए कि ये उन्हें एक साथ एकत्र करेगा। क्रम में परमेश्वर का वचन कितना सिद्ध है, हर बार वैसे ही, यहाँ तक कि मैंने पिछली रात्रि कहा कैसे उरीम और तुमीम और हर चीज ने सदा परमेश्वर को उत्तर दिया। एक क्षण आइए हम भविष्यद्वक्ता को फिर से लें। योना, मैंने योना के लिए सदा लिया है। योना का पहला अध्याय मेरे पास यहाँ लिखा रखा है, पहला अध्याय यहाँ उसकी भविष्यवाणी का है। योना वेल के पेट में से आया, एक चिन्ह था। देखिए, लोग मूर्ति पूजक थे, उन्होंने समुद्र देवता की आराधना की और उनके समुद्र का देवता एक वेल थी। अब बहुत से लोग योना को दोषी ठहराते हैं। मैंने सदा योना का पक्ष लिया। योना प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं था। धर्मी के कदम प्रभु की आज्ञा से चलते हैं। हम कहना चाहते हैं वो योना है, परंतु हम उसे उसके उस पर लें। एक बार उसकी क्या योग्यता थी, मैं जानता हूँ उसे निनवे जाना था, परंतु परमेश्वर उस जहाज को तर्शीश ले गया और समुद्र में उस पर संकट आया। योना ने कहा, मेरे हाथ और पैर बांध दो, मैं ही संकट में हूँ जो इसका कारण है, और उसे बाहर फेंक दिया और मछली जल में तैर रही थी, एक बड़ी मछली जिसने योना को सटक लिया। मैं जानता हूँ विज्ञान के लिए ये विश्वास करना कठिन है। यहाँ अधिक दिन नहीं हुए, लुइविल केंटकी में लगभग 10 वर्ष पहले उनके पास एक वेल चपटी कार पर रखी हुई थी और वहाँ कुछ आवारा थे। वे अधिक बुद्धिमान थे, नहीं जानते थे कि कैसे नियंत्रण में रहें। वो यत्न कर रहा था कि बताए कि बाइबल कैसे झूठ बोलती है। उसने कहा, आप जानते हैं, आपने सुना है बाइबल की वो पुरानी कहावत कि वेल योना को निगल गई। उसने कहा, देखो कि आप इसके गले में बॉल को पार नहीं कर सकते, वो बहुत छोटा था, कैसे पूरा मनुष्य उसके पेट में चला गया। कहा, देखिए ये बस पुरानी कहावत है और ऐसी ऐसी बाइबल में भरी पड़ी है। मेरे विचार में ये बहुत अधिक था। मैंने कहा, श्रीमान मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। कहा, तुम्हारे पास कहने को क्या है? मैंने कहा, आप देखिए कि आपने बाइबल को सही नहीं पढ़ा। मैंने कहा, बाइबल ने कहा कि वो विशेष वेल थी, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली बनाई, ये विशेष तौर पर बनी थी कि उसे निगल जाए, ये उसने कर दिया। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, परमेश्वर कुछ अजीब कार्य करने जा रहा था, इसलिए उसके पास अजीब मछली थी, समझे? और उसने फिर इसके विषय में अधिक नहीं कहा, इसलिए ये परमेश्वर के पास विशेष चीज थी। एक समय एक छोटी लड़की के समान आराधनालय से आ रही थी, उसके छोटे बाल पीछे को बने हुए थे, बहुत ही चिकने कि उसका मुख छिली प्याज जैसा दिख रहा था। उसके पास बाइबल थी, नीचे जा रही थी। इस बूढ़े आदमी का नाम जिम डॉर्सी था, यूटिका में रहता था। वो नास्तिक था, पुराना सिपाही, परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, युवती कहाँ जा रही हो? उसने कहा, श्रीमान घर जा रही हूँ। वो, तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ रखा है? उसने कहा, ये बाइबल है। कहा, तुम इसका विश्वास न करो, क्या तुम करती हो? और वो, कहा, श्रीमान मैं इसका विश्वास करती हूँ। और कहा, क्या तुम उस कहानी का विश्वास करती हो जो वेल के विषय में, जिसने योना को निगल लिया था? कहा, क्यों, निश्चय ही मैं इसके हर शब्द का विश्वास करती हूँ। उसने कहा, विश्वास को छोड़, तुम इसे किसी और प्रकार से कैसे सिद्ध कर सकती हो जिसे तुम विश्वास कहते हो? क्यों, उसने कहा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं योना से पूछ लूंगी। समझे। उसने कहा फिर क्या होगा यदि वो वहाँ नहीं हुआ। उसने कहा तो फिर तुम्हें पूछना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये सोचा ये सुंदर अच्छा सीधा है, इसलिए मैं सोचता हूँ ये सही के विषय में है। यदि बाइबल ने कहा कि योना ने वेल को निगल लिया, मैं इसका विश्वास करूंगा। वे इसे तैयार कर सकता था जो परमेश्वर ने कहा परमेश्वर करने में सक्षम है, और वो सदा अपने वचन को स्थिर रखता है। इसलिए योना हम उसका उपहास उड़ाते हैं, परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया कि एक मछली जब तैरती है ये अपना भोजन खोजती है, और जब ये उसे खाती है तो ये सीधे नीचे तलहटी में जाती है और अपने छोटे सिन्नों को तलहटी में थोड़ा विश्राम देती है। अपनी सुनहरी मछली को खाना खिलाएं और देखें क्या होता है। वे अपने छोटे पेट को भर लेती है, तब वे नीचे जाती है और अपने सिन्नों को तलहटी में टिका देती है और पड़ी रहती है और विश्राम करती है। अच्छा, ये बड़ी तैयार की हुई मछली आती है और इस नबी को सटक गई और समुद्र के तले वो चला गया, और संभव है 40 फुरसा वहाँ गहरे में वहाँ नीचे चला गया समुद्र की तलहटी में स्वयं को विश्राम देने। अब हम सदा योना के विषय में सोचते हैं और हर कोई कहता है अब मेरे लिए प्रार्थना हो गई परंतु मेरा हाथ अच्छा नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना हुई थी परंतु मैं कुछ अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ। तुम कभी भी योना पर मत चिल्लाओ। अब उसके लक्षणों की ओर देखें जो उसको थे। अब पहले स्थान में वो तूफानी समुद्र से बाहर है और वो उस क्रम से बाहर है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे, उसे तूफानी गरजते समुद्र में फेंक दिया गया और वेल ने उसे सटक लिया और समुद्र की तलेटी में चली गई, और वो वहाँ उल्टी में पड़ा हुआ है वेल के पेट में, समुद्री घास उसकी गर्दन के चारों ओर, और यदि वो इस ओर देखता है तो वेल का पेट है, ये उस ओर देखता है तो ये वेल का पेट है। हर जगह जहाँ वो देखता है ये वेल का पेट था। आप मामलों के लक्षण के विषय में बात करते हैं, उसको भी ये हो सकते थे, परंतु आप जानते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा वे लोग झूठ का आडंबर हैं, मैं उनकी ओर अधिक न देखूंगा, परंतु एक बार और तेरे पवित्र मंदिर को मैं देखूंगा। क्योंकि सुलेमान पृथ्वी का स्वाभाविक मनुष्य जिसने मंदिर के समर्पण की प्रार्थना की, कहा प्रभु यदि तेरे लोग कहीं भी संकट में हो और इस पवित्र स्थान को देखें तो स्वर्ग से सुन लेना। और योना को विश्वास था जिसमें सुलेमान ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वेल से छुड़ाया। 3 रात दिन के पश्चात वो वहाँ नीचे ऑक्सीजन का तंबू लगा सकता था। मैं नहीं जानता उसने क्या किया, परंतु उसने उसे 3 रात दिन जीवित रखा वचन के अनुसार, और वचन सही है। ठीक है, यदि योना उन परिस्थितियों में मनुष्य द्वारा बनाए मंदिर को फिर देख सकता था तो आपको मुझे कितना और आज रात्रि होना चाहिए कि उस मंदिर को देखें जहां यीशु उस महान के दाहिने हाथ अपने ही लहू के साथ खड़ा है और हमारे लिए बिचवाई करता है हमारे छोटे छोटे लक्षण पर। योना पर दोष न लगाएं और फिर देखें कि आपके साथ क्या गड़बड़ है। प्रतिज्ञा की ओर देखें, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यदि आप अब्राहम की संतान हैं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, उसने प्रतिज्ञा की है और ये तय हो गया। ध्यान दें, सारे लोग वहाँ मछली पकड़ रहे हैं और अपने जाल आदि खींच रहे हैं, और थोड़ी देर में समुद्री देवता निकल आता है, एक वेल किनारे की ओर आ रही है, हर कोई घुटनों पर आ गया। परमेश्वर जानता है कि चीजों को कैसे करना है, और वो सीधी किनारे पर आ गई और अपनी जुबान चाटी, और जब उसने ये किया तो ये भविष्यद्वक्ता चलता हुआ उस वेल के मुंह से निकला। भविष्यद्वक्ता, देवता का थूक, भविष्यद्वक्ता वहाँ किनारे पर है, कोई आश्चर्य नहीं, उन्होंने प्रायश्चित किया, समझे। वो एक चिन्ह था, योना वेल के द्वारा लाया गया एक चिन्ह था। उसने क्या किया, ये परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह था। उस आवाज ने क्या कहा, प्रायश्चित करो या 40 दिन के अंदर मर जाओ। परमेश्वर का चिन्ह, परमेश्वर का शब्द। सदा जब परमेश्वर चिन्ह भेजता है, परमेश्वर अपना शब्द चिन्ह के पीछे भेजता है। ध्यान दें, प्रायश्चित या 40 दिनों के अंदर सारा नगर नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता पृथ्वी पर प्रकट हुआ बिना भविष्यद्वक्ता के 400 वर्षों पश्चात उसके प्रकट होने का चिन्ह ये थोड़ा ढीला समय है। अब यदि आप आत्मिक हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्रभु आपकी समझ खोल दे, ये कितने समय रहा। 400 वर्षों तक इसराइल बिना भविष्यद्वक्ता के, कलीसियाएं इतनी बिगड़ गई थीं, और फिर यूहन्ना दृश्य पर आया। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था, एक चिन्ह जो मसीह के विषय में बोलने जा रहा था। उसके पश्चात ध्यान दें, क्योंकि मलाकी 3 ने कहा मैं अपना दूत अपने आगे आगे भेजूंगा कि मार्ग को तैयार करें, लोगों को तैयार करें। यहूना को देखिए, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उसने कभी कोई महिमा नहीं ली, परंतु उन्होंने उसे मसीह कहने का यत्न किया, परंतु उसने कहा मैं उसका जूता खोलने के योग्य नहीं। परंतु जैसे ही यीशु प्रकट हुआ, उसके पास एक चिन्ह था, एक अग्निस्तंभ, एक उसके ऊपर ज्योति, एक पंडुकी के समान नीचे आया, एक शब्द बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूँ, ध्यान दें। और तुरंत यहूना ने कहा, उसे बढ़ना चाहिए, मुझे घटना चाहिए। उसने कलीसिया को मसीह के सामने उपस्थित किया। आमीन। हमें बताया गया कि अंत के दिनों में ये फिर से होगा, वहाँ फिर एक संदेश आने वाला है जो कि मसीह का परिचय लोगों से कराएगा, और ये इस प्रकार से होगा कि वे भौचक के खड़े रह जाएंगे जैसे वे पहले हुए। उसने ये प्रतिज्ञा दी है। मत्ती का अगला अध्याय मलाकी का इस विषय में हमें बताता है, ध्यान दें, उन्होंने इस विषय में पूछा, यहुन्ना का स्वभाव उसे एलिया के आत्मा में प्रमाणित करता है। अब ध्यान दें, दो भविष्यद्वक्ता। अब एलिया एक मनुष्य था जो इसराइल के समय में उठा, उस उपद्रव में अहाब राजा था और सारी स्त्रियों ने जिजाबेल का सा उपहास उड़ाया था, और संभवतः वाटर हेड केश सज्जा और सब चीजें संभवतः जैसे आज हमारे यहाँ, और सेवकों ने सोचा और ये बस अच्छा है, वो जिजाबेल उन्हें अकेला छोड़ दो और उन्हें ये करने दो। और इस समय परमेश्वर ने जंगल में से एलिया नाम एक मनुष्य को उठाया। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आया, उसका कोई विद्यालय नहीं कि उसे प्रमाणित करे, परंतु वो उठा और उसने सारे मामले को दोषी ठहराया, उसने सारी व्यवस्था को दोषी ठहराया। यदि वो आज दृश्य में आ जाए तो वो हमारी सारी व्यवस्था को भी दोषी ठहराएगा। उसने हर जिजाबेल को दोषी ठहराया, और ये अंततः ये उसका था कि नबी को तोड़े और गिराए। यहुन्ना के समान दौड़ गया और झाऊ वृक्ष के तले लेट गया जब जिजाबेल उसे मारने वाली थी, वो उससे घृणा करती थी। और तब हम पाते हैं कि जब यहुन्ना फिर जंगल में से निकल कर आया, जंगल का प्रेमी, आधुनिक स्त्री के रहन सहन, तलाक और विवाह, और फिर विवाह करने वालों पर सीधा स्पष्ट संदेश उसने टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। वो किसी भी विद्यालय से नहीं आया, वो परमेश्वर की ओर से आया, एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ, और उसने आधुनिक स्त्रियों को दोषी ठहराया, उनके विरुद्ध कठोर, और उसने कभी चुटकियां नहीं ली, परंतु उसने स्पष्ट कहा, समय समीप था, मसीहा बोलने वाला था। उसकी ओर देखो, उस एलिया के आगमन के पहल समय की कोई तुलना नहीं। आज के इन आधुनिक नबियों से अपनी इजाबेलों को बाल काटने दे रहे हैं और छोटे कपड़े पहनाना, सिगरेट पीना, कोई भी चीज जो वो करना चाहते हैं, उनकी जहां तहां अगुवाई, अच्छा है कि कुछ ना कहें, वो एक को छोड़ दूसरे के साथ हो लेगी, और मनुष्य द्वारा बनाए गए मतसारों से उनकी अगुवाई करना, और ये मनुष्य की लज्जाजनक शिक्षा है, और इसे करने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रभावहीन कर दिया, क्योंकि वे कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं और फिर भी स्वयं को मसीह कहते हैं और अपने अधिकार बनाए रखते हैं और कहते हैं कि वे मसीही हैं और चलते रहते हैं। यही जो वो चाहते हैं, यही जो उन्होंने तब किया। परंतु स्मरण रखें, ये एक ऐसे समय में है जैसे कि परमेश्वर ने मलाकी 4 में प्रतिज्ञा दी है कि वो फिर से वचन को पूरा करेगा। ये ठीक बात है। देखिए, आज हम कहाँ हैं, जैसे कि यहुन्ना के समय में था, जैसे कि और समय में था। इस बूढ़े छोटे अमोस को देखिए, खड़ा हुआ है, एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति, हम नहीं जानते वो कहाँ से आया, वो एक चरवाहा था, परमेश्वर उसे बाहर भेड़ों और गायों की चरागाह से ले जा रहा था और उसे प्रशिक्षित कर रहा था। और जब वो सामरिया में आया, जब वो उस दिन पहाड़ पर पहुंचकर ऊपर आया और नीचे देखा, और सूर्य उसके गंजे सिर पर चमक रहा था, और उसकी दाढ़ी सफेद थी, और उसकी आंखें एक साथ हुई चमचमा रही थी, उसके भक्तिपूर्ण आंखें झपक रही थी, उस दृश्य के कारण नहीं जैसे कि कोई पर्यटक देखता है जब वो आता है, क्योंकि सारा नगर पाप को दे दिया गया था। ये छोटा अपरिचित व्यक्ति कौन है? हाँ, ये आमोस है, भविष्यद्वक्ता। इसने यरोबाम दूसरा के दिनों में भविष्यवाणी की, एक स्वधर्म त्यागी राजा हुआ, लोगों को कुछ भी करने दो, सारे याजक इसके लिए अंदर थे, उन्होंने सुंदरतम आराधनालय बनाए, उनके पास सबसे अच्छे वस्त्र थे, उनकी स्त्रियां चरित्रहीन थीं, वे जो भी चाहते पहनते, पर्यटक लोग चारों ओर सुंदर लड़कियों को देखने के लिए, और उनका जीवन बस एक दूसरा आधुनिक अमेरिका परमेश्वर के लोग समझ गए। इस विषय में कोई कुछ नहीं कहता। ये लोगों पर ऐसी पकड़ प्रतीत होती है। अब आज 18 वर्षों से मेरी रिबेका 18 वर्ष की है। आज 18 वर्ष मैंने इन बातों पर दोष लगाते हुए राष्ट्र को पार किया है। और जब मैं वापस आया एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष तो बाल कटी स्त्रियां और अधिक हो गईं, जब से मैंने पहली बार आरंभ किया था। एक बड़ा लोकप्रिय पेंटेकोस्टल प्रचारक मुझे कमरे में ले गया, अच्छा नामी, संसार में जाना पहचाना, लगभग एक वर्ष पहले की बात है। उसने कहा, मैं भाई ब्रैनम, मैं अपने हाथों को आप पर रखकर आपके लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा, मैं बीमार नहीं हूं। उसने कहा, परंतु कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप अपनी सेवकाई नष्ट कर लेंगे, लोगों का सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। कोई आश्चर्य नहीं, प्रचारक आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे जिस प्रकार से आप उन स्त्रियों को दोषी ठहराते हैं। उसने कहा, वे लोग आपको भविष्यद्वक्ता कहते हैं। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ। उसने कहा, परंतु वो सोचते हैं कि आप हैं। उसने कहा, मैं वही विश्वास करता हूँ। उसने कहा, आपको बीमारों के लिए प्रार्थना करने को बुलाया गया है। उसने कहा, बीमारों के लिए प्रार्थना करो और उन स्त्रियों को उनके हाल पर छोड़ दो, आप उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, उनके पहनने के विषय में कटे हुए बालों और आदि आदि बातें करना। मैंने कहा, ये गलत है। बाइबल ने कहा, एक स्त्री जो अपने बाल कटाती है उसके पति को अधिकार है कि वो उसे तलाक दे दे। बिल्कुल ठीक है, उसने अपने सिर का अपमान किया, यही जो बाइबल ने कहा। अब मैं नहीं जानता कि आप इससे सहमत हैं या नहीं, परंतु बाइबल ने ये कहा है पहले कुरिन्थियों में, इतने तंग की खाल बाहर आ जाए। और वे बाहर आते हैं, कहते हैं, क्यों श्रीमान ब्रैनम, कि वे केवल इसी प्रकार के वस्त्र बेचते हैं, उनके पास अब भी सामान और सिलाई मशीनें हैं, कोई बहाना नहीं। एमिश और डंकर्ड स्त्रियां अब उन्हें पहनती हैं निश्चय ही। और क्या घटित हुआ, वे वहां बाहर आए और बढ़ते गए। एक स्त्री ने कहा, ठीक है श्रीमान ब्रैनम, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, मैं वे क्या है, पैडल। हाँ, कहा, मैं वो पहनती हूँ। मैंने कहा, ये बुरा है। मैंने कहा, बाइबल कहती है स्त्री के लिए ये घृणा की बात है जो पुरुष के कपड़े पहने, और कितना गंदा दिखने वाली। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, अब समझे, ये ठीक बात है। बहन, मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुमुदनी के समान शुद्ध हो सकती हैं अपने पति या अपने पुरुष मित्र के लिए, परंतु न्याय के दिन आप व्यभिचार करने के लिए उत्तर देने वाली हैं। यीशु ने कहा, जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यदि वो पापी आपको देखता है और उस महिला को न्याय के दिन उत्तर देना पड़ेगा, आपने स्वयं को उपस्थित किया अपने अनुसार। ओ क्यों एक भक्तनी स्त्री इस प्रकार के वस्त्र पहनेगी? फिर आप दावा करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है क्योंकि आपने अन्य भाषा बोली है और फर्श पर इधर उधर भागे हैं। मैंने मूर्ति पूजकों को ये करते देखा है, जंगली जाति। पवित्र आत्मा शुद्धता है, पवित्र, विशुद्ध, निश्चय ही। इस पुरुष ने कहा, यदि आप वे आपका भविष्यता होने का विश्वास करते हैं, आप क्यों नहीं उन्हें महान पवित्र वरदान पाने को सिखाते हैं कि कैसे पाएं और परमेश्वर के लिए चीजों को कैसे करें? क्यों नहीं आप उन्हें ये सिखाते यदि आप नबी हैं? मैंने कहा, मैं उन्हें बीज गणित कैसे सिखाऊं जबकि उन्होंने अपना कैक है भी नहीं सीखा है। आप जानते हैं ABC का क्या अर्थ है, सदा मसीह पे विश्वास रख करें, ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। आप ये कैसे करने जा रहे हैं? आप वहाँ से दूर जाना चाहते हैं बजाय कि आरंभ करें। परमेश्वर अपनी कलीसिया को यीशु मसीह की नींव पर बनाएगा और यही बाइबल है। इसके बाहर सारी भूमि धंसने वाली है, रेत है। परमेश्वर बदलता नहीं, उसका स्वभाव बदलता नहीं। उसने स्त्री को पुरुष से भिन्न बनाया है और पुरुष को स्त्री से, उसने उन्हें भिन्न वस्त्र पहनाए और चाहता है कि वे उसी प्रकार से रहें। समझे, स्त्रियां पुरुष के समान दिखना चाहती हैं और पुरुष स्त्रियों के समान दिखना चाहते हैं। ओ प्रभु, एक ऐसी मिलावट ये, और सारा मामला ऐसा प्रतीत होता है कि इसने लोगों पर कब्जा कर रखा है और आप इसे बदल नहीं सकते, बड़े दैत्य के समान, महान कालिक। यदि आप समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आत्मा में दैत्य ने इन्हें पकड़ लिया है, वे इससे बच नहीं सकते। बहुत अधिक हॉलीवुड, बहुत अधिक टेलीविजन, बहुत सी दूसरी निरर्थक बातें, हर चीज जो हमारे पास है दूषित है। कोई आश्चर्य नहीं, यदि कार्य छोटा नहीं किया जाता चुने हुए के कारण, तो कोई भी शरीर न बचता। आपने कहा, मैंने इससे पहले कभी नहीं जाना। अच्छा, अब आप जानते हैं, अब से आगे, समझे, यही है। अच्छा है कि मैं इसे यहाँ रोक दूं। आइए हम वापस चलें। ध्यान दें, यूहन्ना एक चिन्ह था, और ये स्मरण रखें, जिस प्रकार से परमेश्वर ने पहली बार किया उसी प्रकार से वो दूसरी बार फिर करेगा। उसने ये प्रतिज्ञा की है। अब परमेश्वर लोगों के झुंड को कभी प्रयोग नहीं किया किसी भी समय ऐसे। स्मरण रखें, एक बार एक झुंड था, उस महान पुरुष का नाम अहाब था। उसने अपने लिए 400 इजरायली भविष्यद्वक्ता लिए। अब वे मूर्ति पूजक नबी नहीं थे, 400 इजरायली भविष्यवक्ता, उनकी अपनी डिग्री और सब कुछ था, बड़ा विद्यालय था। वहाँ एक भक्त मनुष्य यहोशापात था, जो कि यहूदा का राजा था, और वो आया और यही जहाँ विश्वासी अविश्वासी के साथ मेल खाता है, चीजें गलत हो गईं। और उसने कहा रमोत गिलाद, अब इस पर ध्यान दें, ये कितना सत्य हो सकता है। उसने कहा वहाँ वो रमोत गिलाद हमारा है, वहाँ पर वो भाग वो हमारा है, यहोशू देश के बंटवारे में उसे इसराइल को दिया था, और फिलिस्तीनी मूर्ति पूजक आए और उनसे ले लिया। उसने कहा वो हमारा है। अब ध्यान दें कितना आधारभूत है, लोग सही हो सकते हैं और फिर भी चूक जाते हैं। वास्तव में वो चीज इसराइल की है, परंतु भाई परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं शर्त पर हैं। देखिए यदि वे प्रभु के सम्मुख चलते हैं। अब यहाँ देखिए, उसने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगे और उस भूमि को वापस लेने में मेरी सहायता करोगे। वो वहाँ फिलिस्तीनी बालक वहाँ अपना पेट भर रहे हैं उस गेहूं से जो इसराइल का है, ये वचनानुसार सही है। उसने कहा वहाँ जाने में मेरी सहायता कर और उन्हें ले ले। कहा ठीक है मेरा, यही उसने उतावली में गलती की, मेरे रथ तेरे रथ, मेरे मनुष्य वैसे ही जैसे तेरे, मैं तेरे साथ जाऊंगा। और फिर यहोशापात सोचने लगा, आप जानते हैं, कहा इसके पहले हम जाएं, हमें प्रभु से परामर्श नहीं कर लेना चाहिए। ओ बिल्कुल, आपने कहा निश्चय ही, ओ मुझे क्षमा करें, मैं मुझे इस विषय में सोचना चाहिए, क्या यहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं है। ओ निश्चय ही मेरे पास है, उनका धर्म विद्यालय वहाँ नीचे है, सबसे अच्छा है जो आपने कभी देखा हो, वे सब बहुत अच्छे वस्त्र पहनते हैं, वे बहुत ही विद्वान हैं, मैंने उन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित किया है, हम जाकर उन्हें लाएंगे। इसलिए वे वहाँ गए और वे सब जमा हो गए, वे ढोंगपने में नहीं थे, उन्होंने प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना की जब तक उन्होंने दर्शन देखा, और वे आए, उनमें से एक ने लोहे के दो सींग बनाए। उसने कहा इसके द्वारा तुम फिलिस्तीनियों को दबाने जा रहे हो या अरामियों के देश को बाहर से निकाल दोगे। उसने कहा यहोवा यूं कहता है, तुम जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। और उनमें से प्रत्येक एक ही मत हुए और आत्मा में आ गए। इजरायली नबियों ने कहा जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। आप कहते हैं क्या ये वचन के अनुसार है? परमेश्वर ने ये मिराश लोगों को दी है और ये शत्रु ने ले लिया। आपको अधिकार है कि जाकर ले लें। अब पेंतेकोस्तल मैं चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षा ले लें। परंतु यहोशापात भक्त व्यक्ति होने के नाते उसने कहा अब भी कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। कहा क्या आपके पास कोई और नहीं है? और नहीं है, एक और 400 अच्छे शिक्षित नबी यहाँ खड़े हैं, जितने यहाँ नीचे फर्श पर खड़े हैं, एक ही मत में कह रहे हैं यहोवा यूं कहता है, इसे वापस लो और कहो यहोशू ने हमें ये भूमि दी है, ये हमारी है, जाके इसे ले लो। परंतु यहोशापात ने दूसरे के लिए कहा क्या कोई और नहीं है जिसके द्वारा हम प्रभु से परामर्श करें? उसने कहा यहाँ एक और है, परंतु कहा मैं उससे घृणा करता हूँ। ओ कहा वो मिकाया है, इमला का पुत्र। कहा मैं उससे घृणा करता हूँ, वो सदा मेरे विषय में बुरा कहता है। कहा राजा ऐसा ना कहे, जाकर उसे ही ले आओ। तब उन्होंने कुछ भागने वाले वहाँ भेजे और उनमें से कुछ ने कहा अब मिकाया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अब वे तुम्हें उन्होंने निकाल दिया है अपनी संगति से, अधिक समय नहीं हुआ क्योंकि तुम सदा लोगों से बुरी बातें कहते हो। अब यदि तुम अपनी संगति का पत्र वापस लेना चाहते हो, तुम भी वैसे ही कहो जैसे वे कहते हैं, तो वे तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। परंतु वो ही एक वास्तविक भविष्यवक्ता था। उसने कहा जैसा कि प्रभु जीवित है, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा। ओ परमेश्वर उस मनुष्य को आशीष दे। उसने कहा आज रात्रि तक प्रतीक्षा करो, मैं देखूंगा कि परमेश्वर मुझे क्या बताता है। अगली प्रातः कहा जाओ, परंतु मैं देखता हूँ कि इसराइल भेड़ों की नए तितर बितर है बिना चरवाहे के। तब उसने वो दर्शन लेकर उसे एलिया के साथ तुलना की कि उसने क्या कहा, आपको क्या हुआ था, वो कैसे उसे आशीषित कर सकता है जिसे उसने श्रापित ठहराया। कोई मतलब नहीं कितना हम लोग भक्त राष्ट्र हैं, पेंतेकोस्तल कलीसिया, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और आदि आदि मसीह कलीसियाएं, परंतु आप उसे कैसे आशीष दे सकते हैं जिसे परमेश्वर ने श्रापित ठहराया। मैं चिंता नहीं करता, आप कहते हैं मैं इसका सदस्य हूँ, मैंने ये किया, इसका इससे कोई मतलब नहीं। देखिए आपने क्या किया, पेंतेकोस्तल को देखिए कैसे उन्होंने बंधन तोड़े। देखिए आप क्या हुआ करते थे और देखें अब आप क्या हैं, कोई आश्चर्य नहीं, आंखें अंधी हो गई हैं। तब वो आहाब, इस याजक ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा इसे डाल दो, और आहाब ने कहा इसे भीतर वाली जेल में डाल दो, जब मैं शांति में लौटूंगा तो मैं इसे देखूंगा। उसने कहा यदि तू वापस आए तो फिर परमेश्वर मुझसे नहीं बोला। ओह समझे, वहाँ भविष्यवक्ता था, वहाँ एक चिन्ह था, वहाँ उसकी एक आवाज थी, और उसका पालन करने में असमर्थ रहा, न्याय लाया। आज पवित्र आत्मा हमारा भविष्य दखता है, उसकी आवाज सुनने में असफल है। वो पवित्र वचन में प्रमाणित है कि वो ये बातें कहेगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का रूप। परमेश्वर इस मनुष्य से व्यवहार करता है। ये परमेश्वर झुंडों के साथ कभी नहीं वास्ता रखता। ये एक मनुष्य के साथ, एलिया झुंड नहीं था, यहूना झुंड नहीं था, वे लोग झुंड या नामधारी नहीं थे, उनमें से एक भी नहीं, परंतु दोनों ने ऐसों को दोषी ठहराया। ये ठीक बात है। यहूना ने कहा, अपने मनों में सोचकर ये ना कहो कि इब्राहिम हमारा पिता परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर दे। अंत समय को चिन्ह का अंत समय का शब्द होगा, और अंत समय का चिन्ह बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार होगा, और अंत समय का शब्द अंत समय के चिन्ह के पीछे आएगा और पवित्र वचन से प्रमाणित होगा, वचन होगा जिसकी प्रतिज्ञा होगी। अब हमने लूका 17 में पढ़ा है कि अंत समय का क्या चिन्ह होगा। ये सादोम के समान होगा, एक प्रतिज्ञा, और स्वाभाविक में हमारे पास एक सादोम है। क्यों हम यहाँ एक आत्मिक चिन्ह में विश्वास नहीं कर सकते? यदि आप पवित्र वचन भी देख सकते हैं, लूका 17 चिन्ह है और मलाकी 4 शब्द है। चिन्ह ऐसा था कि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, हृदय के विचारों को जान रहा है, और मलाकी 4 की आवाज लोगों को उसके मत्सार से मोड़ रहा है वापस पूर्वजों के विश्वास पर। यही चिन्ह है। आप जानते हैं क्या, अब मैं बंद कर रहा हूँ। चिन्ह अधिकांश स्वीकार किए जाते हैं, परंतु शब्द ओ नहीं, वो शब्द जो चिन्ह के बाद आता है वे उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। जी हाँ, यीशु का चिन्ह एक मसीहा, बीमारों को चंगा करना, उन्होंने ये स्वीकार किया, परंतु एक दिन उसने कहा मैं और पिता एक हैं। ओ, ये शब्द स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा तू स्वयं को परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर के बराबर। उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ओ, परमेश्वर के पास पुत्र कैसे हो सकता है? परमेश्वर के पास पुत्र, ये बात हमसे दूर हो। परंतु आप देखिए, उन्होंने चिन्ह का विश्वास किया, बीमार चंगे हो सकते हैं। ओ, ये तो शानदार है, ये तो बहुत ही बढ़िया था, परंतु जब ये आवाज पर आया, वे शब्द का विश्वास नहीं करना चाहते थे। वे क्या करेंगे? उन्होंने उसे बाहर कर दिया। और क्या आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय इस लुदिकिया कलीसिया काल में कि वो ठीक वही करेगा। वो कलीसिया से बाहर है, ये वचन प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ वचन था, वो अब भी प्रकट किया गया वचन है। यदि आप सादोम के चिन्ह का विश्वास कर सकते हैं, लूका का, यदि आप इसका विश्वास कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं मलाकी 4 का शब्द स्वीकार करते हैं? क्यों नहीं आप? ये प्रमाणित हो सकता है, केवल एक ही मार्ग से किया जा सकता है था, चिन्ह प्रमाणित किया जा सकता है, परंतु आपको शब्द को स्वीकार करना होगा। मूसा को अधिकार दिया गया कि जाए स्वाभाविकता में एक आत्मिक चिन्ह ले और लोगों को वापस बुलाए पूर्वजों की प्रतिज्ञा पर। मलाकी 4 लोगों को वापस लाता है, पूर्वजों के विश्वास पर वापस लाता है। ओ, वापस आए, ओ अंधे और ठुकराए हुए अपनों में। अंत में मैं ये अंतिम टिप्पणी करूंगा। नबी ने कहा सांझ के समय उजियाला होगा। देखिए, उसने कहा ऐसा दिन होगा जो कि ना कि रात या दिन कहलाया जा सकेगा। अब सुनिए, मैं बंद कर रहा हूँ। एक दिन होगा, ये अब गहराई में बैठ जाए, और परमेश्वर आज रात्रि इस समाज में प्रत्येक हृदय के भीतर बैठा दे, इस सभागार में। नबी ने कहा एक दिन होगा जो दिन नहीं कहलाएगा या रात, एक प्रकार से धुंधल का, वर्षा वाला धुंध का दिन, परंतु कहा सांझ के समय उजियाला होगा। अब स्मरण रखें, सूर्य सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम में जाता है। सभ्यता सूर्य के पीछे चलती है, आप ये जानते हैं, और ध्यान दें, वही सूर्य जो पूर्व में उदय होता है वही पश्चिम में अस्त होता है। अब सभ्यता ने भी सूरज के साथ साथ यात्रा की। अब जब तक कि पूर्व और पश्चिम ना मिल जाएं, हम पश्चिमी किनारे पर हैं, पूर्व और पश्चिम। स्मरण रखें, सुसमाचार ने भी ऐसी यात्रा की है। ये पूर्व में उदित हुआ, यीशु मसीह का आगमन, पुत्र न कि सूर्य SON न कि SUN SON पुत्र परमेश्वर का पुत्र पूर्व में उदय हुआ पूर्वी लोगों पर। और अब एक दिन था कि लोग कलीसिया के सदस्य बने, नामधारी बनाए, देखने के लिए पर्याप्त उजियाला। ठीक है, हमारे पास कलीसिया होगी, हम ये बनाएंगे, हम विद्यालय बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हमारे पास धर्म विद्यालय होगा। उनके पास ये करने के लिए पर्याप्त ज्योति है।
The Bible said the prophet of the Lord in the Bible, which is thus saith Lord, that same.
परंतु स्मरण रखें, बाइबल ने कहा, बाइबल में प्रभु का भविष्यद्वक्ता जो कि यहोवा यूं कहता है, वही सूर्य जो पूर्व में चमकता है फिर से पश्चिम में चमकेगा, सांझ के समय उजियाला होगा। वो क्या करेगा? वो ठीक वही करता है जो उसने लूका के 17वें अध्याय में कहा, अंत के समय में जब मनुष्य का पुत्र वैसे ही प्रकट हो रहा होगा जो वो पूर्व में था। वही पुत्र चमक रहा है, वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा, वही चीजें कर रहा है, वही बातें, सांझ के समय उजियाला होगा। वही सूर्य जिसने यात्रा की, उसी पुत्र ने यात्रा की, SON सन पूर्व की ओर से आया, पौलुस से जर्मनी में छलांग लगाई, मार्टिन लूथर पर, फिर छलांग लगाई अपने अगले खिंचाव पर, और वहां से जॉन वेस्ली के पास इंग्लैंड गया, अटलांटिक सागर के पार छलांग लगाई संयुक्त राज्य पेंटिकॉस्टल, और अब पेंटिकॉस्टल स्वयं लड़खड़ा गया है और हम किनारे पर हैं। उनमें से प्रत्येक नामधारी हो गया वैसे ही जैसा उन्होंने आरंभ में किया था, संस्था बनाई जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया, पेंटिकॉस्टल और सब ने यही किया। परंतु उसने कहा सांझ के समय उजियाला होगा, एक चिन्ह सांझ के समय उठेगा। मित्रों, इसमें ना चूकें। अब वही पुत्र वही उजियाला देगा, वही सूर्य उसी सूर्य का उजियाला देता है, वही पुत्र उसी पुत्र का उजियाला देता है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर कोई यहाँ है जानता है, बाइबल कहती है अपने हाथों को उठाएं, ये बिल्कुल ठीक है, अब आप सकते हैं, ये आप पर है। ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है, वो दीनता नम्रता में है, वो सदा इसी प्रकार रहता है। ऊपर का मार्ग नीचे है, स्वयं को नम्र करो, अपने घमंड भरे विचारों से अलग हो जाओ और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, चिन्ह को देखो, फिर शब्द का विश्वास करो। ओ बिछड़ो, अपने में लौट आओ, हम अपने सिरों को झुकाएंगे। और यदि वे पहले चिन्ह की आवाज का विश्वास ना करें, हाथ में जैसा कि ये मूसा के साथ था, तो फिर दूसरा चिन्ह करना, तब यदि वे इस चिन्ह का विश्वास ना करें, तब जल लेना, जल जीवन को दर्शाता है, ये समुन्द्र या सागर में इसे भूमि पर उंडेल देना, ये लहू बन जाएगा। स्वर्गीय पिता, ये वास्तव में देरी हो गई है, परंतु आपने प्रतिज्ञा की है सांझ के समय उजियाला होगा, हमारे सुसमाचार की आवाज लोगों के हृदय की गहराई में बैठ जाए, जैसा कि वे इस पर ध्यान करते हैं और इसका वचन के द्वारा अध्ययन करते हैं। प्रभु इस समाज पर आशीष दें, इन लोगों को आशीष दें, इन्हें यहाँ बैठा हुआ देखें, भूखे बेचारे बच्चे पैर चला रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, और ये जानते हुए कि शैतान ने ये किया है, जब वे चीजें यहाँ आए तो उनसे अंधा करने के लिए होने पाए, आज रात्रि ये एक चित होकर यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास करें कि वो मृतकों में से जी उठा है। आपने कहा उस समय जब वे सोचते ना होंगे तब मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, ठीक जब कलीसिया के पास बहुत पैसा होगा, लाखों डॉलर के भवन बन रहे होंगे, वो तृप्त होंगे। पिता, मैं विश्वास करता हूँ वहाँ पीछे कोने में खड़े हुए खंजड़ी बजाते हैं, टोपी को अपने हाथों में लेकर, पुराना ढोल सालवेशन आर्मी जैसा, सब इन बड़े बड़े भवनों में बैठे होंगे, आज रात्रि संसार के समान होने का यत्न कर रहे हैं, भक्ति का भेष भरते हैं और उसकी सामर्थ्य का इनकार करते हैं। एक बार फिर प्रभु इसे प्रदान करें, जैसे समसून चिल्लाया, प्रभु एक बार और, प्रभु फिर एक बार, ये प्रकट हो जाने दें कि तू ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, कल आज और सर्वदा एक सा है और स्वयं को हमारे मध्य में प्रमाणित कर रहा है, ताकि वे चिन्ह देख सकें, वे शब्द का विश्वास करें। इसमें यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। हम जल्द ही प्रार्थना पंक्ति को बुलाने वाले हैं। मैंने देख लिया, वास्तव में यही समय है। हम विसर्जित हो रहे थे, परंतु प्रार्थना पंक्ति को लें, बस छोटी सी प्रार्थना पंक्ति, तब फिर कल हम आरंभ करेंगे। उसने आज प्रार्थना पत्र दिए हैं, इसलिए हम प्रतिदिन पत्र देते हैं, ताकि प्रत्येक को अवसर मिले, ताकि वे आए एक विचित्र समय। प्रार्थना पंक्ति में आना ये आपको चंगा नहीं करता, हर कोई जानता है, हर सभा में बाहर बहुत अधिक चंगे हुए बजाय यहाँ के। देखिए, सदा ही पवित्र आत्मा वैसे ही सर्वव्यापी है, वो केवल विश्वासियों को ढूंढने का यत्न कर रहा है, बस वो कर सकता है। टी प्रार्थना पत्र दें, जैसे पॉल। चलिए, हम जहाँ भी हैं, ठीक है, एक से बुलाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन्हें यहाँ खड़ा होने दें। यदि आप चाहें, उनके प्रार्थना पत्र पी, जैसे पौलुस, 1 से 10, इस ओर यहाँ खड़े हो जाएं। यदि आप खड़े हो सकते हैं, यदि नहीं हो सकते, तो हम किसी को आपकी सहायता के लिए पहुँचाएंगे। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 2 और 8, 9, 10, ठीक है, 10 से 15, 5 और, 15 से 20, खड़े हो जाएं ताकि मैं देख सकूं यदि आप खड़े हो रहे हैं। पी 15 से 20, 20 से 25, अब हम देखें आप जहां भी हैं। अब बाकी भक्त मंडली श्रद्धा भाव में रहे थोड़ी सी मिनटों के लिए। ये प्रार्थना पत्र पी होगा, 1 से 25, है कि नहीं, 25, 1 से 25। अब हर कोई श्रद्धा भाव में रहे, परमेश्वर को सम्मान दें, संदेश देता है, आपको परमेश्वर को देना चाहिए। एक मिनट ध्यान दें और विचार करें। अब मैं सोचता हूं कि वे लोगों को तैयार कर रहे हैं, वे जो नहीं, यदि उनके पास प्रार्थना पत्र है और वे पंक्ति में नहीं आए हैं, वे ढूंढ लेंगे, वे मुझे थोड़ी देर में बता देंगे, और फिर वे तब हम देखेंगे यदि कोई बहरा या कोई जो नहीं सकता है। मैं नहीं जानता मित्रों कि वे कहाँ हैं। वे प्रार्थना पत्र, लड़का यहाँ आया, जब वो आया उसने सामने पत्रों को मिला दिया और तब उसने आपको प्रार्थना पत्र दिए हैं। यहाँ आया और आप सबको बैठने को कहा, आपको प्रार्थना पत्र दिया, समझे। मैं नहीं जानता वे कहाँ हैं। मैं इस बालक को ऊपर यहाँ लाने का यत्न कर रहा था, और दूसरे मैं उनको नहीं जानता, मेरे पास कोई विधि नहीं है कि जानूं। मैं समझता हूँ परमेश्वर ही इस प्रकार ठहराता है, वो इसको इसी प्रकार ठहराना चाहता है। अब आप बाकी लोग जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, अपने हाथ उठाएं, कहें मेरे पास प्रार्थना पत्र नहीं है परंतु मैं रोगी हूँ, अपने हाथ उठाएं। भवन में कहीं भी मैं चिंता नहीं करता कहीं आप हैं, आप अपना हाथ उठाएं। अच्छा, तो यहाँ बहुत सारे लोग नहीं है। अब इसके अनुसार ये प्रार्थना करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब कल प्रार्थना पंक्ति के लिए यहाँ लगभग 20 हैं, जो इसके बिना यहाँ खड़े हैं, जो बीमार हैं। ये अच्छा है, मैं आपको देखकर प्रसन्न हूँ कि इस प्रकार आपने स्वीकार किया है। आपके पास पहले से अधिक विश्वास है, मेरे सोचने से हो सकता है, समझे। यदि आपने अपनी स्वीकार कर ली है तो अपना पत्र फेंक दें, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये वास्तव में सच्चा विश्वास है, आपके ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा, आपने मसीह पर अपने हाथ रखे। अब यहाँ आज रात्रि जो प्रार्थना पंक्ति में नहीं होने वाले हैं, आप इस कथा का विश्वास करते हैं, जैसे कि उस स्त्री ने उसके वस्त्र का छोर को छू लिया और वो घूमा और पहचाना कि उसने उसे किसने छुआ। कितनों को कहानी याद है, निश्चय ही आपको है। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि वो बाइबल ने इब्रानी 4 में कहा कि वो ठीक इस समय महायाजक है जिसे हम अपनी निर्बलता की दशा में छू सकते हैं। यदि वो आज कल और सर्वदा एक सा है, क्या वो वैसा ही व्यवहार नहीं करेगा? क्या उसने नहीं किया एक से दूसरी रात्रि यहाँ पर? कितने लोग और सभाओं में थे और उसे ये करते हुए देखा? जरा उठाएं, निश्चय ही समझे। समस्त संसार में वो जानता है, वो आपके विषय में सब जानता है। अब देखिए मैं क्या करने का यत्न कर रहा हूँ। कितना समझते हैं कि मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूँ, समझे। मैं चाहता हूँ कि आप बिना किसी के आपके ऊपर हाथ रखे, परमेश्वर के सच्चे जन कहता है, यीशु मसीह में आपका विश्वास करता हूँ, मैं आपको अपना चंगा करता स्वीकार करता हूँ, मैं अब आपको अपना बचाने वाला स्वीकार करता हूँ, ये मैं अपने समस्त हृदय से विश्वास करता हूँ, ये कार्य हो गया। तो फिर इस प्रतिज्ञा को पकड़े रहें, अपने पाप स्वीकार को थामे रहें और इसके साथ आगे बढ़े। देखिए क्या होता है, समझे। अब मैं आपसे यही करने का यत्न कर रहा हूँ, एक वास्तविक विधि जिसमें हम विश्वास करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नंबर 4 प्रार्थना पत्र नंबर 4 और नंबर 19 नहीं है। प्रार्थना पत्र 4, किसी को देखें, अपने पड़ोसी के पत्र को देखें। प्रार्थना पत्र नंबर 4 और नंबर 19, ठीक है, एक मिनट रुकिए, देखिए, यदि मैंने उन्हें नहीं बुलाया तो इस पर प्रतिक्रिया होगी। आप देखिए क्या कहा, 4 है आपके पास, 19 के बारे में क्या है? 19 अभी तक नहीं आया। क्या कहा? प्रार्थना पत्र 4 अभी नहीं आया या 19? यदि किसी के पास ये पत्र हैं, यदि आप पंक्ति में आएंगे या देखिए, ये हो सकता है कोई, क्या उस छोटे बालक के पास वो पत्र है? देखिए, नहीं, ये नंबर नहीं है। क्या यहाँ इस महिला के पास वो पत्र है पहिए वाली कुर्सी में? उसका नंबर देखें, क्या ये उसका नंबर है? एक महिला चारपाई पर, ओ उनके पास है। अब ये सब है, ठीक है, ठीक है। अब आप जिनके पास प्रार्थना पत्र है उन्हें थामे रहे, हम सेवा करने जा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। अब मित्रों, ये अंतिम रात्रि होने के नाते जो हमारे पास कल होगी, रविवार दोपहर बाद, स्वयं को शांत रखें। अब हर अविश्वास को जो आप में है, कभी कोई अनुचित विचार जो आपका हो, उसे जमीन पर डाल दें और अपना पैर उस पर रखें, जैसे ये था। कहें, प्रभु यीशु, मैं आपका विश्वास करने जा रहा हूँ। कितने ये करेंगे? धन्यवाद प्रभु, आपको आशीष दे। अब कोई अपने स्थान से न हटे, बिल्कुल शांत बैठे रहें, विश्वास करें, इस प्रकार ध्यान दें। और अब देखें, परमेश्वर का प्रमाण सदा जाना गया है, जो हो गया पहले से देख सकता है और बताता है कैसे था, क्या था या क्या होगा। हम थे, जानते हैं, इसी प्रकार से नबी जाना जाता था, ऐसे ही यीशु मसीहा जाना गया था। और अब वो वही मसीहा है जैसा वो तब था। अब केवल बिना देह के यहाँ पृथ्वी पर उसने अपना आत्मा वापस आपकी देह को, मेरी देह को प्रयोग करने को भेजा। अब आप इसे नहीं करने के योग्य नहीं हो सकते, हम जानते हैं, पवित्र वचन में पीढ़ी में एक है, परंतु देखिए, परंतु फिर भी आप इसका विश्वास कर सकते हैं। और आपके पास दूसरी चीज है जो आप कर सकते हैं, हर कोई। क्या हो यदि मेरी उंगली निर्णय ले, क्योंकि ये मेरी आंख नहीं है, ये कभी भी मेरी उंगली नहीं हो सकती। क्या हो यदि ये बांह कहे, अब मैं और ऊपर नहीं उठूंगी, अब मैं एक बांह नहीं रहूंगी, क्यों? ये मेरी देह को अपाहिज बना देगा। आप वही हैं जो परमेश्वर ने होने को आपको रखा है। कितनी बार मैंने ओरल रॉबर्ट की सराहना की है, बिली ग्राहम की, टॉमी ऑसबर्न की, उनमें से कुछ एक व्यक्ति ने बढ़कर कहा, परमेश्वर की महिमा हो, इसका विश्वास करो, जबरदस्त विश्वास, चले गए। बाहर जितनी ताजगी से जा सकते थे चले गए। बिली ग्राहम संदेश के साथ खड़ा होता है, लोगों से कुछ मिनटों बातें करता है, कहता है, अपना निर्णय लो, वेदी पर आओ, बस वहीं खड़े रहो, दूसरी चाल कभी ना चलो। उसने कहा, इसलिए बिली तुम ये क्यों करते हो? कहा, मेरा संदेश गया, ये परमेश्वर की ओर से आया था, ये ठीक बात है। वो सादोम की कलीसिया में है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। उसका नाम HAM से समाप्त होता है, अब्राहम से, छह अक्षर अब्राहम में सात थे। उस कलीसिया के संदेश वाहक को देखिए, वहाँ नीचे बाबुल में, निश्चय ही राष्ट्र में कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसकी पकड़ प्रायश्चित के संदेश पर हो, जैसा बिली ग्राहम है। वो वहाँ खड़ा होता है, वहाँ से निकलता है और जाकर मांस खाता है, सोने जाता है, दूध पीता है, ये ठीक है। और जब आपको खड़े होकर शैतानों से लड़ना हो, एक बार लॉन्ग बीच पर भाई जैक और मैं, आपके पिता वहाँ खड़े थे, और वहाँ श्री फुलर, चार्ल्स फुलर वहाँ खड़ा हुआ प्रचार कर रहे थे। उस दोपहर बाद लगभग 2-3 हजार लोग थे, हम बैठे हुए उनकी सभा को सुन रहे थे, मैंने सभागार किराए पे ले रखा था उनके बाद, और वहाँ खड़ा हुआ और अच्छी बातें कहीं, और कहा, कोई भी यहाँ मसीह को स्वीकार करना चाहता है? दो या तीन लोग अपने बच्चों को समर्पण के लिए आगे आए। एक महिला ने कहा वो इसे स्वीकार करना चाहती थी, आया, आकर छोटी प्रार्थना की, एक डीकन ने, वापस जाकर बैठ गया, हाथ मिलाया, घूमा, चला गया। ये उसका ज्ञान था, अच्छे वस्त्र वाले लोगों का झुंड वहाँ जा रहे थे, यहाँ मेरे वाले आए, सीधे कपड़े, पहिए वाली कुर्सियाँ, अंधे, लंगड़े, अपाहिज, टुंडे। जब आपके विश्वास का ऐसा सामना होता है, अब यहाँ मैं मसीह क्या है इसका दावा करता हूँ, और अब अविश्वासी चारों ओर बैठे हुए हैं, कोई गलती ढूंढना चाहते हैं, देखिए, कोई गलती ढूंढने का यत्न कर रहे हैं। इसमें रहे, टोरंटो में बहुत अधिक समय नहीं हुआ, हम वहाँ खड़े हुए प्रचार कर रहे थे, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैं एक विचित्र आत्मा का अनुभव कर रहा था, ये मेरी बाई ओर थी, मैं उस पर ध्यान रखे हुए था। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था, एक झुंड उसे किराए पर लेकर आया था कि मुझे सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज करे। वो सेना के पड़ाव में जाता और सिपाहियों को उनके हाथों पर करके कुत्ते के समान भौंकवाता था, और चीजें, सम्मोहन। मैंने अनुभव किया वो प्रेत आत्मा है, मैं नहीं जान पाया कि वो कहाँ से आ रही है। मैं ध्यान रखता रहा, मैंने वो काली छाया देखी, मैंने कुछ मिनटों प्रतीक्षा की, मैंने कहा, तू शैतान के बालक, शैतान ने क्यों तेरी बुद्धि को इस प्रकार की चीजों के लिए अंधा कर रखा है? क्योंकि तू परमेश्वर से आगे होने को आया है, परमेश्वर के आत्मा को चुनौती, वे तुझे यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। उसे वहीं फालिज गिरा बैठे बैठे, और अब भी फालिज से मारा हुआ है, समझे? हम कलीसिया में खेलते नहीं, कितने उस सभाओं में थे और ऐसी ही चीजें होती देखी। आप जानते हैं जो चीजें होती हैं, निश्चय ही ये ठीक है, स्मरण रखें, आदर भाव में रहें। अब यहाँ मैं समझता हूँ पहला व्यक्ति, क्या ये ठीक बात है? अब देखिए, मैंने प्रचार कर दिया, आपको बता दिया है ठीक है जो इस दिन में होना है। अब ये चिन्ह है, यदि ये होता है, यही है जो चिन्ह था, तो फिर शब्द जो चिन्ह के पीछे आता है उसका विश्वास करें। देखा, अब यहाँ ये महिला है, बिल्कुल ठीक। आप नए आने वालों के लिए ये यूहन्ना 4 है, जहाँ हमारा प्रभु यीशु कुएं पर एक स्त्री से मिला। वे जीवन में पहले कभी नहीं मिले थे और उसने उस स्त्री को बताया कि उसकी क्या परेशानी थी और वो ये पहचान गई कि वो मसीहा है। आप कहानी जानते हैं, ये फिर से यहाँ एक और पुरुष और स्त्री मिलते हैं। अब ये वो महिला नहीं है और मैं वो पुरुष नहीं, परंतु वो अब भी वही परमेश्वर है, समझे? अब यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, संत यूहन्ना 14:12। अब महिला, आपको ना जानते हुए वो विचार नहीं कि आप यहाँ किस लिए खड़ी हैं? ये घरेलू परेशानी हो सकती है, ये किसी और के लिए हो सकता है आप बीमार हो, संभव है आप वहाँ खड़ी हैं कुछ लिए हुए। यदि ये है तो मालूम करें क्या घटित हुआ, समझे? हो सकता है आप कोई नकल कर रही हो, ये जो भी है, मैं नहीं। आप सच्ची विश्वासी हो सकती हैं, मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर जानता है। परंतु आप जान जाएंगी कि वो आपको सत्य बताता है या नहीं, क्या नहीं? यदि ये सत्य है आप जान लेंगी।
अब
देखिए, आपके विश्वास को यही करना है। आप कैसे यहाँ आना चाहेंगी? अब यदि कोई विश्वास करता है कि ये गलत है, आप यहाँ आएं और इस रोगी को लें, यहाँ आएं और बाकियों को लें। तब यदि आप ये नहीं करेंगी तो मुझे दोष ना दें, समझे? अब एक मिनट बहन, इधर देखें। अब मेरे पास कोई विचार नहीं आपके विषय में, कुछ भी नहीं, बस आप एक महिला वहाँ खड़ी हैं। अब यदि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, जिसने बाइबल को सिद्ध किया, ये प्रतिज्ञा की है, वो अंत के दिनों में वापस आएगा और स्वयं को अपनी आत्मा की भरपूरी में प्रकट करेगा, जैसे कि कलीसिया ऊपर आ रही है, जैसे कि मनुष्य से आता है, पैरों से होता हुआ ऊपर, जांघों पर, सिर तक, और सिर शरीर का सिर है। अब देह ऊपर आई है, जब से पहली कलीसिया ऊपर आई, इसमें सुधार में अब तक ऊपर आई है। ये न्यायोचितता से होती हुई पवित्रकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अब ये सिर मसीह देह पर आ रहा है, मसीह की देह। यही है वो जो जानता है, मेरा हाथ नहीं जानता कि कैसे करना है, बस मेरे सिर के द्वारा, परंतु वो है जो जानता है। यही कारण है कि वो वचन है। मैं वचन नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, परंतु आप देखिए, वो देह को प्रयोग करता है, क्योंकि वो इस देह को पवित्र करने के लिए मरा, ताकि वो इसे प्रयोग कर सके, और वरदान दिया इसे गियर से बाहर निकालना, तब पवित्र आत्मा से ले लेता है। तब यदि वो व्याख्या करेगा या आपको बताएगा कि आपने क्या किया, आप यहाँ किस लिए हैं, या आपके विषय में कुछ, आप इसका विश्वास करेंगी? और एक भक्त मंडली भी यहाँ यही विश्वास करेगी? प्रभु परमेश्वर इसे प्रदान करे। अब मैं यहाँ हर आत्मा को अपने नियंत्रण में लेता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए। अब शांत बैठें, इधर उधर ना घूमें, इधर देखें, एक क्षण मुझे देखें। जैसे कि पतरस और यूहन्ना ने कहा द्वार से निकलते हुए, दूसरे शब्दों में ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ, समझे? यीशु ने उस स्त्री से कुछ प्रश्न किए, मुझे पानी पिला। देखिए, मैं वही चीज प्रचार कर रहा था। पिता ने मुझे यहाँ बैटन रॉज भेजा, मैं यहाँ हूँ। पिता ने कहा उसे सामरिया होकर जाना अवश्य है, वो वहाँ बैठ गया। वो स्त्री पहली थी जो उसके पास आई, उसने वो चिन्ह किया उस स्त्री पर और सारे नगर ने प्रायश्चित किया। ये क्या ही अंतर है? आप सोचते हैं वही चीज वो आज रात्रि करेगा? आप सोचते हैं कि सारा बैटन रॉ प्रायश्चित करेगा? मुझे संदेह है, क्या आपको नहीं? मैं अवश्य करता, परंतु हम अंत के दिनों में हैं, जहाँ दुष्ट पहले से अधिक दुष्ट जो कभी जाना गया। आपकी दशाएं, आप यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए हैं, ठीक बात है, और आप गले की दशा से परेशान हैं। यदि ये सही है तो अपना हाथ उठाएं। केवल यही नहीं, परंतु कोई और है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं। ये बालक है, और उस बालक के गले की दशा के लिए, ये बालक के गले की स्थिति, गले में मांस बढ़ा हुआ है। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर उसे भी चंगा करेगा? वो रुमाल जो आपके हाथ में है, जिसे आपने परमेश्वर की ओर उठाया एक गवाही के रूप में, अब संदेह ना करें, जाइए और रुमाल को उस बालक पर रख दें। संदेह ना करें अपने संपूर्ण हृदय से, परमेश्वर आप दोनों को चंगा करेगा और स्वस्थ करेगा। क्या आप ये कर सकते हैं? जाएं और प्रभु आपके साथ हो। आप कैसे हैं? हम भी अपरिचित हैं। क्या विश्वास करते हैं? ये चिन्ह है, अब शब्द है, वचन पर वापस आओ। आपको नहीं जानता, वो जानता है। यदि वो मुझे आपके विषय में कुछ बताए तब क्या आप विश्वास करेंगे? वो वचन जो मैंने कहा वो इसका प्रमाण है। देखा, मैंने कहा उसने ये कर दिया, ये भविष्यवाणी। अब यदि भविष्यवाणी घटित होती है तो उसने कहा इसे सुने। आपकी बहुत ही अधीरता की दशा है, जिससे आप पीड़ित हैं वो अधीरता है, और आपको फोड़ा है और फोड़ा आपके पैर पर है। ये ठीक बात है कि नहीं? अब क्या आप विश्वास करती हैं? तो फिर अपने मार्ग पर जाएं और विश्वास करें, और जैसा कि आपने विश्वास किया वैसा ही आपके साथ होगा। आप कैसे हैं? मैं आपको नहीं जानता, परंतु परमेश्वर आपको जानता है। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी बता सकता है? मेरी ओर देखें, आपको परेशानी है, परंतु वास्तव में आप यहाँ किसी और के लिए खड़े हैं, और वो जो आपके साथ पाला गया, ये एक बहन है। ये ठीक बात है। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपकी उस बहन के साथ क्या गड़बड़ी है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? उसे हृदय रोग है। ये ठीक बात है। क्या विश्वास करते हैं कि वो अब चंगी होने जा रही है? तो फिर आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो। आइए महिला, आप कैसी हैं? यदि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपको क्या परेशानी है, या आपने क्या किया है, या कुछ, क्या इससे आपको विश्वास होगा? आप जानते हैं कि मैं आपको नहीं जानता। ये उसका गुण होगा, स्वयं को मुझ में प्रमाणित करना वचन के अनुसार जिसकी उसने प्रतिज्ञा की। आप इसका विश्वास करती हैं? आप दूसरी, आपकी परेशानी आपकी आयु जैसी महिलाओं की है, परंतु आपका मूल विचार किसी और के लिए है। आपकी इच्छा परमेश्वर, आप परमेश्वर को अपने लिए नहीं ढूंढ रही, परंतु किसी और के लिए। ये पुरुष है, ये आपका पति है, और उसे हृदय रोग है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो हो जाएगा, परमेश्वर उसे चंगा करेगा? जाइए, विश्वास कीजिए, और जैसा कि आपने विश्वास किया वैसे ही आपके साथ हो। देखिए, सारा प्रचार इस घड़ी के लिए जो मैं प्रचार कर रहा था, ये वो जो कभी था, तीन या चार लोग निकल गए। अब मैं यहाँ कठिनता तक खड़ा रह सकता हूँ, समझे? देखा, सारी भीड़ दूधिया सफेद सी दिखाई पड़ रही है चारों ओर। यहाँ यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है, और यदि एक महिला के उसका वस्त्र छूने से मुझ में से सामर्थ बाहर आई है, और वो परमेश्वर का पुत्र, तो मेरे विषय में क्या, एक पापी उसके अनुग्रह से बचाया हुआ। उसने कहा जो कार्य मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तुम इससे अधिक करोगे। मैं जानता हूँ किंग जेम्स कहता है बड़े, परंतु यदि आप मूल अनुवाद लेंगे, कहा तुम इससे अधिक करोगे। कोई अधिक बड़े नहीं कर सकता। उसने मृतकों को जिलाया, उसने प्रकृति को रोका और सब कुछ किया, परंतु उसने कहा तुम इससे अधिक करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं, देखिए, मैं व्यक्तिगत सरनाम, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारे अंदर भी। तो फिर ये मनुष्य नहीं, ये मसीह है। मैं ये कर रहा हूँ, एक प्रकार से स्वयं को झकझोर रहा हूँ कि स्वयं में वापस आऊँ। आप स्थान से हट जाते हैं जब तक थोड़ी देर के लिए, ये तब नहीं जब आप वहाँ हैं या यहाँ नीचे, ये बीच में। कितने ये समझते हैं? मैं आपको जानता हूँ, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। क्या आपको कभी मालूम है कि कवि और नबी सदा स्नायु होते हैं? कितने ये जानते हैं? कितनों ने विलियम कॉपर को पढ़ा है, एक महान अंग्रेजी कवि? आप जानते हैं, लिखा है एक चश्मा जो लहू से भरा इमैनुअल की शिराओं से। उसके इस गीत के लिखने के बाद आपने सुना कि उसे क्या हुआ? अधिक समय नहीं हुआ, मैं उसकी कब्र के पास खड़ा था। उसने आत्महत्या का प्रयास किया और नदी में डूब गया। कितनों ने कभी स्टीफन फॉस्टर के विषय में सुना है? अमेरिका को सबसे अच्छे लोकगीत दिए हैं। उसके पास वो मस्तिष्क में थे, न कि हृदय में। हर बार उसको प्रेरणा होती तो वो गीत लिखेगा, तब जब प्रेरणा समाप्त हो जाती तो वो नहीं जान पाता कि अपने साथ क्या करे, और वो नष्ट हो गया। वो पिए हुए था, और अंततः जब वो अपनी प्रेरणा से बाहर आने लगा, उसने नौकर को बुलाया और ब्लेड लेकर और आत्महत्या कर ली। ये ठीक बात है। एलिया को देखिए, वो वहाँ गया और स्वर्ग से आग उतारी, और पहले दिन स्वर्ग से वर्षा बुलाई और आकाश बंद कर दिया और सब कुछ किया। फिर जब प्रेरणा चली गई तो वो जंगल में चला गया और मरना चाहता था, और परमेश्वर ने उसे 40 दिन बाद पाया, गुफा में लेकर आया। ये ठीक बात है। योना नबी को देखें, संदेश देने के बाद ऊपर जाकर पहाड़ पर बैठ गया और परमेश्वर से कहा मुझे मरने दे, ओ अपने दास को शांति से विदा कर। लोग नहीं समझते, नहीं नहीं, आप नहीं समझेंगे, ना ही मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, ना ही दूसरा व्यक्ति। आप परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते। परमेश्वर वैज्ञानिक अनुसंधान से नहीं जाना जा सकता, परमेश्वर विश्वास से जाना गया। हम उसका विश्वास करते हैं। आप कैसे उसकी व्याख्या कर सकेंगे और कैसे विश्वास होगा? हम परमेश्वर को विश्वास से जानते हैं। कलीसिया कभी भी उस परिश्रम को और थकन और थकाऊ कार्य और परीक्षा को नहीं जान पाएगी जो इस संदेश को लाने के लिए किया गया। वो जानता है मेरा पुरस्कार लोगों से नहीं आता। महिला इधर देखिए, जी हाँ जल्दी, इस महिला पर मृत्यु की छाया है। परमेश्वर इस महिला के पास सीधा सीधा नहीं आया। मैं क्या आप देख सकते हैं, कालापन उसके चारों ओर है। वो मर जाएगी उतनी ही निश्चित जितना संसार। अधिक समय नहीं हुआ, उन्होंने कुछ इसी प्रकार का चित्र लिया था और घर पर लिया। उसके पास काली छाया लटक रही थी, उस पर मृत्यु की छाया है। इस छोटी महिला की शल्य चिकित्सा हुई है और इस शल्य चिकित्सा में उन्होंने कैंसर का ऑपरेशन किया और अब उसे परेशानी है सब प्रकार की, बस बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एक चीज, आप इतनी दुर्बल हैं कि आप खड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात, मूत्राशय से मवाद आता है। अब बस आप देखेंगे, मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझे, क्या ठीक बात है। परंतु महिला, डॉक्टर ने यत्न किया, इसके लिए मैं उसे श्रेय देता हूँ। वो एक निदान था, परंतु परमेश्वर चंगाई है। आप इसी प्रकार मरने जा रहे हैं, जो वो सब जो कर सकता था वो कर चुका। क्या विश्वास करते हैं, एक मिनट यहाँ आइए। उस अधिकार के द्वारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा दिया गया, सरदूत के द्वारा गवाही दी गई, जो कि अब अग्निस्तंभ के रूप में यहाँ उपस्थित है, मैं इस शैतान को दोषी ठहराता हूँ जो इस स्त्री का जीवन ले रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जाइए, विश्वास करें उस सब से जो आप में है, विश्वास करें। आपको एक परेशानी है जो किसी भी चीज से अधिक लोगों को मारती है, हृदय रोग। वे दावा करते हैं कि ये नंबर एक बीमारी है, परंतु क्या नहीं श्रीमान, बीमारी का विश्वास करना नंबर एक पाप है। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि वो उस हृदय को चंगा करने के योग्य है और आपको स्वस्थ करता है? तो फिर जाइए, इसका विश्वास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सोचते हैं परमेश्वर आपकी पीठ को चंगा कर सकता है और आपको स्वस्थ करता है? क्या आप इसका विश्वास करते हैं संपूर्ण हृदय से? जाइए, इसका विश्वास करें। क्या आप इसका पूरे हृदय से विश्वास करते हैं? इसका विश्वास करिए बहन, देखिए आपको क्या होता है और अच्छी हो जाइए, जाइएगा। जोड़ों का दर्द और हृदय रोग, परंतु आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है अपने पूरे हृदय से? आप इसे स्वीकार करती हैं? उसके अनुसार जैसे आपने विश्वास किया उसी प्रकार से आपको होगा। अब जाइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपको भी पीठ में परेशानी है, क्या आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? अब जाइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करिए, मैं आपको चंगा नहीं कर सकता। देखिए, प्रोस्टेट अधीरता और आपको गठिया भी है। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ कर सकता है, आपको चंगा? क्या आप ये स्वीकार करते हैं? तो फिर जाइए और इसका विश्वास करें। बहुत सी बार ये खांसी आपको जगाए रखती है, परंतु परमेश्वर दमे को चंगा करता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आपको स्वस्थ कर सकता है, करता है? परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। क्या हो यदि मैं आपसे एक भी शब्द ना कहूँ, बस अपना हाथ आप पर रखूँ, क्या विश्वास करेंगे? यहाँ आइए, मैं अपना हाथ आप पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और गठिया आपको छोड़ जाए, ये छोड़ता है। आइए आइए बहन, क्या विश्वास करती हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर जाइए, अपना सांझ का खाना खाएं और आपका पेट ठीक हो जाएगा। बहुत ही पीठ की परेशानियां, ये आपको लंबे समय से परेशान कर रही हैं। विश्वास करते हुए जाएं कि आप जाइए, विश्वास करते हुए कि आप चंगे होने वाले हैं और परमेश्वर आपके लिए ये करेगा। आमीन। ये बात, प्रभु आपको आशीष दे भाई। आमीन। मधुमेह कुछ नहीं है कि परमेश्वर चंगा करे, वो उन्हें स्वस्थ कर सकता है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? ठीक है, इसे स्वीकार करें, अपने पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते जाएं। आपके लहू में, ये आपको भी है। क्या विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर आपको स्वस्थ करेगा? जाइए, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें और स्वस्थ हो जाएं। आप विश्वास करते हैं उसने तभी आपको चंगा कर दिया जब ये आपको लगा उसने किया? महिला रोग, हृदय रोग, आप ये विश्वास करती हैं? जाइए, यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी पीठ को अच्छा कर देगा, आपकी किडनी भी हो जाएगी? आपको आशीष दे, बस आगे बढ़े। मैं चंगा नहीं करता, मैं चंगा नहीं कर सकता, मैं चंगा करता नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं जब उसने अपनी पीठ के विषय में कहा, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी पीठ भी ठीक हो जाएगी? ठीक है, बस जाइए इसे विश्वास करते हुए, फिर बस विश्वास करते हुए जाएं अपने संपूर्ण हृदय से। आपका भी, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करता है? जाइए विश्वास करें अपने संपूर्ण हृदय से, परमेश्वर इसे प्रदान करेगा। यद्यपि आपको इसका विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको भी चंगा करेगा? ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। बस साथ साथ बढ़ते रहें और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। आइए श्रीमान, पुरानी सफेद बूंद टपक रही है, इसका निदान मधुमेह दर्शाएगा। क्या विश्वास करते हैं कि वो तुम्हें चंगा करेगा? आइए रक्त लेने कलवरी पर चलें, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में वो चंगा हो जाए। आमीन। भाई परमेश्वर आपको आशीष दे, अपने पूरे हृदय से विश्वास करें। क्या आप विश्वास करते हैं? आप जो भक्त मंडली में बैठे हैं, आप लोगों के विषय में क्या है? क्या आप सारे हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है? क्या आप ये विश्वास करते हैं? इस वाले भाग में क्या है? वो छोटी महिला बैठी हुई है, मेरी ओर देख रही है, महिला रोग से ग्रस्त है। क्या विश्वास करती है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? नीला कोट पहने हैं, ठीक है, अब विश्वास करें यीशु मसीह आपको चंगा करता है। ये साधारण है। महिला जो ठीक आपके पीछे बैठी है, काले बाल, उसने कहा, धन्यवाद प्रभु, किसी चीज ने उस पर प्रहार किया। वो नहीं जान पाई कि ये क्या था। मूत्राशय की परेशानी आपको छोड़ गई। वहाँ बैठी हैं, उस महिला के पीछे बैठी हैं, तभी ठीक हुई। यदि आप पूरे हृदय से विश्वास करें, महिला आप करती हैं, ठीक है। यदि आप स्वीकार करना चाहती हैं, तो अपना हाथ उठाएं, परमेश्वर आपको चंगा करता है। यहाँ नीचे क्या है? कोई है यहाँ? वहाँ पीछे भक्त मंडली में, अब वास्तविक श्रद्धा में हिलिए मत। देखिए, ये बीमारियाँ एक से दूसरे पर जाती हैं। श्रीमान आपके विषय में क्या है? ये अच्छी आयु वाला व्यक्ति यहाँ कुर्सी पर बैठा है, क्या आप विश्वास करते हैं? गठिया और आपको श्वास नली रोग भी है, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? ठीक है, आप पा सकते हैं जो आपने मांगा है, यदि आप विश्वास करें। क्या आप सोचती हैं, महिला उनसे आगे बैठी हैं, क्या आप भी विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं? क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी परेशानी बता सकता है? आप मुझसे दूर हैं, बस अब उस पर विश्वास करें। क्या विश्वास करती हैं कि मैंने आपको सत्य बताया है? तो फिर आपका उच्च रक्तचाप नीचे आ जाएगा। आप ये विश्वास करते हैं? आपने भी अपना हाथ उठाया है, आप उसका साहस बढ़ाने का यत्न कर रहे थे। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि क्या? आपने उसकी बहुत सहायता की, परमेश्वर आपकी सहायता करने को प्रसन्न है। आपको आत्मिक परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है, यदि ये सही है तो इस प्रकार हाथ हिलाएं। अब ये तय होने जा रहा है, वो इसे ठीक करता है। कितने विश्वास करते हैं? आप में से कितने करेंगे? ये मसीही नहीं है, ये अनुभव हो रहा है कि यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। वो अब खड़ा होना चाहता है, कहे, यीशु मैं स्वयं को पापी समान प्रमाणित करता हूँ, क्या आप मेरे पापों को क्षमा करेंगे? अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। ये परमेश्वर आपको, 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 ये वो आपको देखता है, वो आपका नाम लिखता है जब आप ये करते हैं। यहाँ बालकनी में खड़े हो जाएं, कहें, प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ, मैं पहचान कराना चाहता हूँ, मैं अपने प्राणों के लिए अनुग्रह चाहता हूँ। श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मैं अनुग्रह चाहता हूँ। मित्रों, क्या आप नहीं देख सकते? ये वो यहाँ है। परमेश्वर आपको आशीष दे युवक, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे युवती, ये सबसे अच्छी चीज है जो आपने कभी की। अब कोई और जिसने ये ना किया हो, खड़े हो जाएं, कहे, मैं पहचान कराना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मैं स्वयं को प्रमाणित करता हूँ आज रात्रि। वो जो अपना पाप स्वीकार करता है अनुग्रह पाएगा, वो जो अपना पाप छिपाता है फलवंत नहीं होगा। क्या आप उसकी उपस्थिति में हैं, महिला? परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी हाँ, और प्रभु आपको आशीष दे। श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आप कहते हैं, क्या इसका कोई अर्थ होता है? मृत्यु और जीवन के बीच में यही अंतर है। क्या आप उसकी उपस्थिति को यहाँ पहचानते हैं? क्या आप पहचानते हैं? क्या आप अनुभव करते हैं? देखिए, आप देखिए, आप इसे कार्य करते देखते हैं। यही है वो, यही वो है जो उसने कहा वो करेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? कोई और कहता है कि प्रभु मैं स्वयं को एक पापी के समान प्रमाणित करता हूँ, आप अब मेरे पाप क्षमा कर दें। यदि आप पहले ही खड़े हैं तो अपना हाथ उठाएं। आप में से कुछ जो दीवार के साथ साथ खड़े हैं, उठाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई वहाँ पीछे बालकनी में कहे, प्रभु यीशु मैं स्वयं को प्रमाणित करता हूँ, आज रात्रि मैं दया मांगता हूँ, आपकी दिव्य उपस्थिति में यह विश्वास करते हुए वही परमेश्वर जो मेरा न्याय करेगा उसकी उपस्थिति अब यहाँ पर है। वो जानता है कि वो मेरे हृदय से बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि मैं गलत हूँ। मैं खड़ा होकर कहता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं अपनी गलतियाँ स्वीकारता हूँ। आप मेरे हृदय में मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। यही कारण है मैंने प्रार्थना पंक्ति रोक दी। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप क्या सोचते हैं मैं किस लिए रुका? मैं रुका क्योंकि मैं जान गया ये होना ही था। अब यहाँ पर दूसरे हैं, क्या आप खड़े नहीं होंगे? खड़े होकर कहें, कुछ आपके हृदय से बात कर रहा है, आप गलत हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु मैं गलत हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं स्वयं को प्रमाणित करता हूँ। प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर हैं। मैं आपको यहाँ होना है। आपने कहा ये चीजें होंगी, आप ये करेंगे। अब मैं चिन्ह देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसकी व्याख्या मुझे कर दी गई है, जिसे कि इस दिन का चिन्ह होना है। मैंने प्रायश्चित के लिए बुलाहट को सुना है। प्रभु मैं यहाँ हूँ। मैं चिन्ह का विश्वास करता हूँ। मैं शब्द सुनता हूँ। अब आवाज आपसे बात कर रही है। वापस आओ बिखरे हुए भटकने वाले सितारों, वापस आओ। तुम जो निकाले हुए हो वापस आओ। आज रात्रि वापस आओ। क्या आप लौटेंगे? बस खड़े होकर कहो, मैं स्वयं को पापी प्रमाणित करता हूँ, दया मांग रहा हूँ। क्या आप करोगे? कोई और? परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। पुत्र आपको वहाँ परमेश्वर आशीष दे। यदि मैं आपको चूक जाऊँ, वो नहीं चूकेगा। महिला परमेश्वर आपको आशीष दे। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। कोई और बने रहें, मैं एक मिनट और रोकूंगा क्योंकि मैं अभी यहाँ थोड़ा बोझ का अनुभव कर रहा हूँ। कोई और? परमेश्वर आपको आशीष दे महिला। इसे करने की यही विधि है, यही है। कोई और? मैं स्वयं को प्रमाणित करना चाहता हूँ, स्वयं को ऊपर उठाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं दया मांग रहा हूँ। क्या आप ये करेंगे? जल्द से इसके पहले हम आगे बढ़ें, खड़े होकर कहें, प्रभु यीशु मैं स्वयं को प्रमाणित करता हूँ। युवती परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जानते हैं संभव है आपके घर पहुंचने से पहले, परंतु किसी समय या फिर कभी आपके मुख पर ठंडी धुंध आ रही है। किसी प्रातः डॉक्टर आएगा और वो आपकी नब्ज देखेगा जो कि ऊपर आस्तीन की ओर आ गई होगी। कुछ नहीं किया जा सकता होगा। तब आप मृत्यु की ठंडी लहर को अपने मुख पर तैरते हुए अनुभव करेंगे। आप स्मरण करेंगे कि आपने क्या किया है। इसमें रखिए, वे आपको बहुत गहराई में नहीं गाड़ सकते। वे आपका कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, मैं तुम्हें अंतिम दिन फिर जिला उठा खड़ा करूंगा। देखिए, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा, उसके पास अनंत जीवन है और वो न्याय में नहीं आएगा परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया। कोई यदि कर सकता है, कोई रगड़ कर बाहर कर देता है। यीशु ने कहा कि वो जो विश्वास करता है, यही जो मेरा वचन समझता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। वो कभी भी न्याय में नहीं आएगा, दोषी ठहराना, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास कर लिया जिसे परमेश्वर ने जिलाया 2000 वर्षों पहले और अब यहाँ जीवित है आज रात्रि और अपने पुनरुत्थान के फल को दिखा रहा है। क्या कोई और खड़ा होगा? इसके बाद कोई कहता है मैं इसे स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं उसे स्वीकार करना चाहता हूँ। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये बहुत अच्छा है छोटी महिला, ये जबरदस्त बात है। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें। मैंने वेदी की बुलाहट पर ध्यान दिया। यहाँ कुछ समय पहले लोग चिंगम चबाते हुए आ रहे थे और एक ओर से दूसरे को नोचते हुए, परंतु क्या आपने उन लोगों के चेहरों पर गंभीरता देखी? वे युवा स्त्रियां उनके कटे हुए बालों के लिए उनको दोषी ठहराने के बाद भी श्रृंगार कर रही हैं, सारे श्रृंगार साधनों के साथ और कटे हुए बाल वैसी ही खड़ी हैं। मैं एक पापी हूं परमेश्वर, मुझ पर दया कर। ये वो बीज जो वहां पर पड़ा है, उस पर उजियाला पड़ा है और वे ये जानते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। मैं यहाँ हर विश्वासी को चाहता हूँ जो उस व्यक्ति के पास जो खड़ा है, अपना हाथ उस व्यक्ति पर रखे। क्या करेंगे? वो जो खड़ा है, वे आपके पास खड़े हैं। यदि आप मसीही हैं, तो अपने हाथ उन बहन भाइयों पर रखें। अब मैं अपना हाथ आप पर रखता हूँ। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, आज रात्रि यहाँ वे हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। कुछ बीज राह के किनारे गिरे, आप कहते हैं चिड़ियाओं ने आकर एकत्र कर लिए। दूसरे पथरीली भूमि में गिरे और कांटेदार झाड़ियाँ, परंतु कुछ अच्छी उपजाऊ भूमि में जाते हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ है। आज रात्रि बहुतों को स्वीकार करवा दिया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आप सदा तक जीवित हैं और आपने प्रतिज्ञा की है। क्योंकि आप जीवित हैं, हम भी जीवित रह सकते हैं। प्रभु यीशु वे उठे और गवाह के समान खड़े हुए कि उन्होंने आपका विश्वास किया। अब प्रभु मैं जानता हूँ आप उस दिन उनके लिए खड़े होंगे। प्रभु इसे ग्रहण करें। मैं इन्हें आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उन्हें पाए ये किसी अच्छी कलीसिया में जाएं और मसीही बपतिस्मा लें। ये किसी विश्वासियों के झुंड से स्वयं को जोड़ लें और पवित्र आत्मा पाएं और सुसमाचार के परितोषक हों और उस दिन आपके ताज के रत्न हों। और यदि मैं इन्हें फिर से महान दिन के इस पार कभी न देखूं, मैं इन्हें उस दिन देखूं जैसा दर्शन में देखा, कह रहे हों क्या आपको मेरी याद नहीं? ये उस रात्रि बैटन रॉफ में था जो खड़ा हुआ। पिता से प्रदान करें। ये यीशु के नाम में होते हुए आपके हैं। यहाँ मेरे सामने रखे हैं रुमालों का एक बॉक्स, छोटे जूते, रुमाल और कपड़े और लबादे। हमें बाइबल में सिखाया गया है वे संत पौलुस के शरीर से रुमाल और कपड़े छुआ कर ले गए। अशुद्ध आत्माएं लोगों में से निकल गईं। अब पिता हम जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, परंतु आप अब भी वही परमेश्वर हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप वही परिणाम प्रदान करेंगे जैसे कि ईमानदारी से ये पीढ़ी विश्वास कर रही है। उन्होंने कभी भी पौलुस का विश्वास नहीं किया क्योंकि वो पौलुस था। उन्होंने पौलुस का विश्वास किया क्योंकि आपने स्वयं को पौलुस के साथ प्रमाणित किया। और अब वे आज रात्रि उसी चीज का विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि आपने स्वयं को आज रात्रि हमारे मध्य में प्रमाणित किया। और एक दिन हम कहते हैं, एक लेखक हमें बता रहा था, इसराइल अपने मार्ग पे है प्रतिज्ञा के देश के लिए और लाल समुन्द्र बीच में आ गया कि उन्हें प्रतिज्ञा के देश से अलग कर दे। लेखक ने कहा परमेश्वर ने अग्नि स्तंभ में से होकर देखा क्रोधित आँखों से। जब ये इसराइल पर मंडराया, इसने अविश्वासी को अंधेपन और अंधेरे में कर दिया और इसराइल के लिए उजियाला। और जब लाल सागर मार्ग में आया वो डर गया और वो वापस पलट गया और इजरायली प्रतिज्ञा के देश को पार हो गए सूखी भूमि से होते हुए। प्रभु परमेश्वर आज रात्रि यीशु मसीह आपके पुत्र के लहू में से होकर देखता है। जैसा कि मैं अपने हाथों को इन रुमालों पर रखता हूँ, जब इनको बीमारों पर रखा जाए, होने पाए पवित्र आत्मा प्रभु उस व्यक्ति पर दृष्टि करे और बीमारी चली जाए और ये अच्छे स्वस्थ और शक्ति के देश में पार हो जाएं। बाइबल ने कहा सब बातों के ऊपर जिसकी उन्होंने इच्छा की हम अच्छा स्वस्थ पाएं। इसे प्रदान करें प्रभु। मैं इन्हें यीशु मसीह के नाम में भेजता हूँ। आमीन। मैं पीछे चलूंगा जहां वो ले जाए। हम गाएं। पीछे चलूंगा मैं उसके संग जाऊंगा। अब उसकी उपस्थिति यहां है। हम गीत से उसकी आराधना करें सुंदर ढंग से। मार्ग में, क्या आप वास्तव में इसे इस प्रकार से गा सकते हैं? जहाँ वो मेरी अगुवाई करेगा मैं पीछे चलूंगा। जहाँ वो मेरी अगुवाई करेगा मैं पीछे चलूंगा। जहाँ वो मेरी अगुवाई करेगा मैं पीछे चलूंगा। मैं उसके संग जाऊंगा। यदि आप अपने हाथों को उठाएंगे, उसके साथ साथ मार्ग में, अब हम खड़े हो जाएं, फिर से अपने हाथ उठाएं। उसके साथ वाटिका से होते हुए अब हर कोई आत्मा में गाए। वास्तव में छांटने वाला संदेश, हम उसकी उपस्थिति में हैं, उसकी आराधना करें। उसे आराधना को पसंद करता है। वाटिका, मैं उसके संग वाटिका से होते हुए जाऊंगा। मैं उसके संग हर मार्ग से निकलूंगा। अब हम इसे गुनगुनाएं। मैं सकता, अब आप जरा ये कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप किसी से हाथ मिलाएं, कहें यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे, यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे। इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ हैं, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, सब एक दूसरे से हम हाथ मिलाएं। यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे। हम यही है तीर्थ यात्री वाटिका, तीर्थ यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे वाटिका। अब हम अपने हाथों को उठाएं, मैं उसके साथ हर मार्ग में जाऊंगा, मैं उसके साथ हर मार्ग में जाऊंगा। हम अपने सिरों को झुकाएं प्रार्थना में नम्रता के साथ। प्रातः मत भूलिए रविवार स्कूल, कैसी भी या कुछ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता हूँ अपने हृदय में, बहुत वास्तविक। मेरे लिए छोड़ना बहुत कठिन है आज रात्रि, जो भी है मैं अनुभव करता हूँ पवित्र आत्मा बहुत आनंदित है आज रात्रि। संभवतः कल हमारी महान सभा होगी, लोगों को मसीह के पास आते देखते हैं, आप समझे, कोई भटका हुआ क्यों, मैंने वेदी की बुलाहट कभी नहीं की, मैं प्रतीक्षा करता हूँ जब तक मुझे करने की अगुवाई ना हो, समझे। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जिसने अपने हाथ उठाए हैं या खड़ा हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ कि कल आप किसी अच्छी कलीसिया में होंगे, विश्वासियों में अपना स्थान लें। जबकि हमने अपने सिर झुकाए हुए हैं, मैं पास्टर से यहाँ सामने आने के लिए कहने जा रहा हूँ, यदि वो विसर्जित करने के लिए आएंगे, परमेश्वर अब आपको आशीष दे अपने झुके हुए सिरों के साथ और परमेश्वर के सामने झुके हुए हृदयों के साथ।